यदि तुम ना आते तो कौन बताता हमें संदेश कृष्ण का, शक्ति और साहस से भरा। तुम्हारा अधिकार है, यह दंड तुम्हारे हाथ है। मुझ पतित का उद्धार करो कृष्ण कृपा श्री मूर्ति। सेवा का मार्ग निर्मित तुम्हारे द्वारा, हर्षद और स्वस्थ है। प्रातः के निहार बिंदु की तरह सबसे प्राचीन किंतु नित्य नए परिधान में किया अद्भुत कर्म आपने, कृष्ण कृपा शिवमूर्ति। धन्यवाद प्रभुपाद।
हरि बोल। तो जब ही श्रील प्रभुपाद जी ने ये ऑफरिंग अंग्रेजी कविता के रूप में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को अर्पण किया था, तो उसमें अभी उन्होंने जो पढ़ा था इसका भाषांतर कविता के रूप में, तो उन्होंने लिखा कि एब्सोल्यूटिस्ट सेंशेंट डाउ हैज प्रूवड इम्पर्सनल कैलामिटी डाउ हैज रिमूव्ड। तो वो पढ़ने के बाद इसका मतलब है कि जो अध्यात्म परम सत्य है वो एक व्यक्ति है, और जो अद्वैतवाद है उसका आपने निराकरण किया। ये जब भी प्रभुपाद जी ने लिखा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लिए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत प्रसन्न हुए और कहे कि हाँ, उनको पता है मेरा मिशन क्या है, और कहा कि जो भी प्रभुपाद जी लिखेंगे वो सब हारमोनिस्ट में पब्लिश किया जाए। श्रील प्रभुपाद की। तो राधिका तैयार है अभी? तो राधिका के पश्चात प्रतीक तैयार रहे।
हरे कृष्णा। वार्धक्याचे वय असताना हाती घेऊन भगवतानी काठी, प्रभुपादांनी प्रचार केला केवळ आपल्या उद्धारासाठी। वार्धक्याचे वय असताना हाती घेऊन भगवतानी काठी, प्रभुपादांनी प्रचार केला केवळ आपल्या उद्धारासाठी। न बाळगली तमा कशाची जरी संकटे आली मोठी, न बाळगली तमा कशाची जरी संकटे आली मोठी। कृष्णाश्रित राहून संघर्ष केला केवळ आपल्या उद्धारासाठी, केवळ आपल्या उद्धारासाठी। हरिनामाचा प्रचार केला मंदिरे उभारली मोठी, हरिनामाचा प्रचार केला मंदिरे उभारली मोठी। रात्रंदिवस ग्रंथ लिहिले केवळ आपल्या उद्धारासाठी, केवळ आपल्या उद्धारासाठी। आता त्यांच्या प्रसन्नतेसाठी त्यांची इच्छा पूर्ण करावी छोटी, आता त्यांच्या प्रसन्नतेसाठी त्यांची इच्छा पूर्ण करावी छोटी। सहकार्य करून एकमेकांना ग्रंथ वितरित करावेत कोटी कोटी, ग्रंथ वितरित करावेत कोटी कोटी। प्रभुपाद की जय।
तो धन्यवाद राधिका। तो प्रतीक तैयार है। प्रतीक के पश्चात अमोल चैतन्य प्रभु आदरांजलि अर्पण कर सकते हैं।
हरे कृष्णा। तर मी म्हणजे मी आज प्रभुपादांचे काय हे सांगणार नाही, पण असं सांगेन की मला कसं त्यांच्याप्रती आकर्षण झालं। तर मी आता पंढरपूरमध्ये राहतो, तर पंढरपूरमध्ये राहत असताना मी अशा मठामध्ये राहतो जिथं निंबार्काचार्यांचा म्हणजे प्रचार आहे, आणि निंबार्काचार्यांचा मठ आहे तो। आणि तिथं असं आहे की निंबार्काचार्यांचं राधाकृष्णांचं मंदिर पण आहे, पण तिथं मी म्हणजे तिथंच लहानाचा मोठा झालो। पण ज्यावेळेस मी म्हणजे पंढरपूरच्या ह्याच्यामध्ये राहत असताना प्रभुपादांची रथयात्रा निघायची किंवा जगन्नाथजींची रथयात्रा निघायची, पण त्यावेळेस मी ज्यावेळेस बघायचो त्यावेळेस मला एक वेगळंच काहीतरी फिलिंग व्हायचं प्रभुपादांप्रती। तर असं होत असताना मला म्हणजे जास्त आकर्षण इस्कॉनकडं होतं, प्रभुपादांकडं। तर हे एक मला प्रभुपादांचं हे वाटतं। नंतर अजून एक असं की कृपात साधारणपणे सर्व म्हणतात की तुम्ही आध्यात्मिक गुरु आहात व सर्वांच्या हृदयात स्थित आहात, आणि त्याचा मला सहज एक पुरावा मिळाला की जसे आपले देशाचे प्रधानमंत्री म्हणजे प्रधानमंत्रीचे जे वस्त्र आहेत बाहेर देशात ते धुण्यासाठी व इस्त्री करण्यासाठी पाठवले जातात, आणि त्यासाठी मोबदला दिला जातो, पण तो बंद केल्यावर त्यांचे कपडे धुण्याचे कार्य हे बंद होते। पण तुम्ही मात्र विदेशी लोकांच्या मनात असे बसले की केवळ आपले कपडेच नव्हे तर आपल्यासाठी मोफत सर्वस्व अर्पण करणारे लोक निर्माण केले, आणि त्यांच्याकडे पाहून मला असे वाटते की विदेशी लोक समर्पित होऊ शकतात तर मी का नाही, आणि ही भावना अशीच टिकून राहावी व सत्यात परिवर्तित व्हावी ही आज मी प्रभुपादांच्या चरणी प्रार्थना करतो। तर प्रभुपाद या नावाच्या अक्षरावरून मी प्रभुपादांचे गुणांवर रन करण्यासाठी एक ॲक्रॉस्टिक तयार केलं आहे. प्रभुपाद पी प्युअरिटी म्हणजे प्रभुपादांची पवित्रता. आर रेडेन्सी म्हणजे प्रभुपादांचं तेज. ए ॲब्झॉर्वर्स म्हणजे निर्भयता प्रभुपादांची. बी ब्लेसिंग एव्हरी वन परोपकाराची भावना. नंतर एच ह्युमॅनिटी प्रभुपादांची नम्रता. नंतर यू अंडरस्टँडिंग म्हणजे समजून घेण्याची जी त्यांची भावना आहे ती. नंतर पी पेटंट म्हणजे धैर्य प्रभुपादांचं. नंतर ए अल्वेज केअरिंग म्हणजे दुसऱ्याची काळजी घेण्याची त्यांची भावना. डी डेंट्रीमेंट म्हणजे त्यांचं दृढ इच्छा त्यांची प्रभुपादांची. हरे कृष्ण
हरे कृष्ण. धन्यवाद प्रतीक. अमोल चैतन्य प्रभूंनंतर मी विनंती करतो बालाजी गोविंद प्रभू.
हरे कृष्ण. प्रिय प्रभुपाद, बंगाली भाषेमध्ये आपणच उद्धृत केलेलं एक सुवचन ज्यात आपण खऱ्या अर्थानं आपल्या अवतरणाचा मूळ हेतूच जणू काही स्पष्ट केला आहे. प्राण आचयार से हेतू प्रचार. कृष्ण संदेशाचा प्रचार करण्यासाठीच आपलं अवतरण या धरातलावर झालेलं आहे. आपल्या अवतरणाविषयी खरं तर विचार करत असताना माझ्या मनात विचार आला की आपलं जे अवतरण आहे किंवा भगवंत किंवा भगवंताचे महान भक्त त्यांचं अवतरण मग माझ्यासारख्या सर्वसामान्य जीव या भूतलावर अनेक जण वावरत आहेत त्यांचं काय. उत्तर हेच मिळालं की आपलं अवतरण आणि आमच्यासारख्या सर्वसामान्य जीवांचं जे काही आहे ते प्रकरण म्हणजे प्रकृतीच्या कारणामुळं किंवा कर्माच्या फेऱ्यामुळं बांधील असे आम्ही जीव जे आम्ही या भूतलावर येतो. आणि एकूणच आपल्या कृपेनंच आमचा जो उद्धाराचा मार्ग आहे तो सुकर होणार आहे. आणि आपल्या कार्याचा विचार करता व्यावहारिकरित्या जरी मी तो विचार केला तर कुठल्याही प्रकारच्या आर्थिक किंवा सहाय्याशिवाय किंवा कुठल्याही प्रकारे इतर सहकार्यांशिवाय आपण एवढं मोठं कार्य केलं त्यासाठी खूप मोठा त्याग तपस्या आणि बलिदान केलं. खरं तर हे बोलणं किंवा याच्याबद्दलचं गुणानुवर्णन करणंसुद्धा शक्य नाही. पण तरी हे आपण का माझ्या मनामध्ये नेहमी प्रश्न आला की आपण हे का केलं. आणि जेव्हा आपल्या कार्याचा विचार केला आपल्या गुणांचा विचार केला तेव्हा दोन समर्पक उत्तरं मिळालीत की एक गुरूंच्या आदेशांचं काटेकोर पालन आणि दुसरं सर्व जीवांप्रती असलेली आपली अपार करुणा याचीच परिपूर्ती म्हणून आपण हे एवढं महान कार्य या ठिकाणी सर्वसामान्य जीवांना प्रोत्साहित करण्यासाठी केलेलं आहेत. आणि त्याच्या माध्यमातून अनेक मंदिरं त्यानंतर त्या मंदिराच्या माध्यमातून किंवा आपल्या कार्यातून आम्हाला प्राप्त झाले आपले शिष्य आणि त्यांच्या शिष्यांचे शिष्य जे तुम्ही खऱ्या अर्थानं खूप मोठं भेट ही आम्हाला दिलेली आहे की त्या माध्यमातून आम्ही आपलं जे सान्निध्य आहे हे रोजच प्राप्त करत आहोत. आणि अनेक प्रकल्प आपण भक्तांना दिलेले आहेत ज्याचाच एक छोटासा भाग म्हणून गुरुकुल आणि या गुरुकुलच्या माध्यमामध्ये मला सेवा करण्याची संधी मिळालेली आहे. आणि ज्यातून रोज मला काहीतरी आपण नेहमी म्हणायचे की वैकुंठ चिल्ड्रन तर ह्या मुलांकडून खऱ्या अर्थानं मला काहीतरी रोज शिकायला मिळतं. तर आणि सगळ्यात मोठं आपण नेहमीच एक गोष्ट म्हणायचेत की मै रहू या जाऊ किंतु अपनी पुस्तकं मी सदा रहूंगा. हे आपण आपल्या शिष्यांना नेहमीच म्हटलेलं एक वाक्य जे आहे. तर आपल्या एकूणच कार्याचा विचार करता मी आजच्या या आपल्या जन्मतिथीच्या शुभप्रसंगी आशीर्वाद स्वरूप आपल्याकडं मागणी करतो की माझ्या गुरूंच्या आदेशांचं काटेकोर पालन करण्याची क्षमता माझ्यामध्ये निर्माण होवं व तुमच्याच कृपेनं समर्पित भावनेनं मी असं म्हणणार नाही की आपण संपूर्ण जीवांप्रती जी करुणा व्यक्त केलेली आहे तशी माझ्यामध्ये येऊ पण जी सेवा म्हणून जे गुरुकुलची सेवा मला दिलेली आहे त्या विद्यार्थ्यांप्रती प्रामाणिक राहून सेवा करण्याची जी दृढ इच्छा जी आहे ही माझ्यामध्ये निर्माण हो ही आपल्याकडून आशीर्वादाची अपेक्षा. हरे कृष्ण. खूप खूप धन्यवाद.
धन्यवाद अमोल चैतन्य प्रभू. तो बालाजी गोविंद प्रभु के पश्चात बरसाना कुमारी माताजी तैयार रहे.
श्रील प्रभुपाद की जय. I have immense gratitude to you for changing the course of my life 16 years back. And all this has happened due to your hard work and sacrifice. I was then at a crossroads to decide which path I need to take. But your grand disciples, you send your grand disciples to show me this path of bhakti, which of course was given to me without any returns of investment. Your endeavor on integrity and focus empowered me on this to this wonderful path of Krishna consciousness. You had written about Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada. He lives forever by his divine instructions, and the follower lives with him. And you of course live in your books. Since you are perpetually fixed at the lotus feet of your spiritual master, and by this example, you are showing us how to be fixed in the service of the Guru, who is a pure representative of Krishna. I have a confession to make, that I am always not successful in implementing your teachings, but I have firmly resolved to gradually and surely imbibe the same in my life and try and make a tangible difference in others' lives also. With these few words, I would like to thank you for bringing so much light in our lives, and kindly do so in all our days to come. Srila Prabhupada ki jai.
Thank you so much, Bhaiyaji Bandhu. Barsana Kumari Mataji ke pashchat Sundar Keshav Prabhu tayar hai. Just ek announcement karna tha ki ye jo gaadi number hai 6275 6275, wo shayla ke पास में जिनका किड्स जोन के इधर जिनका गाड़ी है, तो कृपया वहाँ से आपको स्थानांतरित करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे 15 और गाड़ियाँ अटकी हुई हैं. हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा. श्रीला प्रभुपाद, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेसेंसेस एट योर लोटस फीट. प्रभुपादांच्या चार सूत्रामध्ये मला थोडे पास टाइम सांगायचे होते. प्युरिटी इज द फोर्स. प्रभुपादाने आपल्या प्युरिटीवर पूर्ण देशभर आणि बाहेर देशातसुद्धा ट्रॅव्हल करून ऑल ओवर द वर्ल्ड, अँड ही नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड. ॲक्च्युली आपण समजा कॉम्प्रोमाइज केलं असतं, आणि आपण केव्हा कॉम्प्रोमाइज करतो की जेव्हा आपल्यामध्ये एवढी प्युरिटी नसते. पण प्रभुपादाने प्युरिटी इज द फोर्स हे आपल्याला त्यांच्या सूत्रामधून दाखवलेलं आहे, की ही ट्रॅव्हल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड अँड नेवर कॉम्प्रोमाइज्ड टू ऑन एनी ऑफ द थिंग्स. सेकंड, प्रीचिंग इज द एसेन्स. जसं महाप्रभूंनी म्हटलं, पृथ्वीचे आचरती नगरादी ग्राम सर्वत्र प्रचार होबी मेरं नाम. प्रभुपादाने हे एसेन्स घेतलं, आणि प्रीचिंग काय असतं हे सगळं आपल्याला दिलं. आणि आज आपण बघतो की गावागावामध्ये हा प्रीचिंग चाललेला आहे. थर्ड, युटिलिटी इज द प्रिन्सिपल. न्यूयॉर्कमध्ये हिप्पीज प्रभुपादांना काही पण भेटवस्तू द्यायचे, आणि एकदा एकाने टिश्यू पेपर दिला होता. ॲक्च्युली टिश्यू पेपर वेस्टर्न कंट्रीमध्ये टॉयलेटमध्येच वापरला जातो, पण प्रभुपादांनी ते ऑल्टर क्लीन करण्यासाठी वापरला होता. म्हणजे युटिलिटीमध्ये प्रभुपादांनी कधी हेच नाही केलं. इवन इन सॅन फ्रान्सिस्को टेम्पल, आय थिंक इट वॉज द अबॉर्शन क्लिनिक, अँड प्रभुपाद सेड दॅट वी कॅन मेक अ ऑल्टर आउट ऑफ इट, अँड त्याच्यावर आपण भगवंतांची आज टेम्पल पण उभारलं. सो युटिलिटी इज द प्रिन्सिपल पण आपल्याला सूत्रामध्ये प्रभुपादाने एक्झॅम्पलरी म्हणून दाखवलं. अँड बुक्स आर द बेसिस, एज वी नो की भक्ती सिद्धांत सरस्वती ठाकूरनी त्यांना सांगितलं होतं, इफ यू हॅव मनी प्रिंट माय बुक्स, अँड प्रभुपादाने ते केलं. सो एव्हरी मॅरेथॉन आय रिमेंबर दिस फर्स्ट टाईम प्रभुपाद सेड वन टाईम टू हिज डिसायपल, do you read my books? And he said, Prabhupada, I distribute. And Prabhupada said, do you study my books? So it is like we have to study our books. In one of the lectures I have heard, it is like prayerful chanting, attentive hearing, and meditative reading are the three aspects of our sadhana. So Srila Prabhupada, as Valji Govind Prabhu said, always we are on the crossroads. And as we said, whom to take shelter? तर आपल्याला हरी, गुरु, वैष्णव आणि भगवद्गीता असं आपण क्रॉसरोडवर आल्यानंतर नेहमी विचारात घेतो. त्याच्यामध्ये मला नेहमी वाटतं की हरी तर आपल्याला खूप मला असं दूरच वाट
सध्या तरी आपली प्युरिटी नाही आहे, तर प्रत्येक वेळेला इकडं येऊन कुठं पण प्रभुपादांची ड्युटी दिसली तर आपण प्रभुपाद दिसले की आपण त्यांच्याजवळ प्रार्थना करतो. काल पण मी एका छोट्या मुलाला विचारलं, तुला टेम्पलमध्ये काय आवडलं, आणि त्याने सांगितलं मला ते आवडले. आणि त्यांना इवन त्या छोट्या बाळाला माहीत पण नव्हतं की प्रभुपाद आहेत. म्हणजे एवढं एफल्जन्स, प्युरिटी, हे तुम्ही लेगसीमध्ये, तुमची लेगसी स्टील लिव्ज श्रीला प्रभुपाद, ही फर्दर नेण्यासाठी आमच्यामध्ये क्षमता आणा की वी लिव्ह अप टू दॅट मार्क अँड डू समथिंग टू कॅरी फॉरवर्ड दिस. थँक्यू श्रीला प्रभुपाद. हरे कृष्ण.
हरि ओम. धन्यवाद बरसाना कुमारी माताजी. सुंदर केशव प्रभु तयार आहे. तो मैं प्रेमधन प्रभु को निवेदन करता हूँ कि अपना ऑफरिंग प्रेजेंट करें. और प्रेमधन प्रभु के बाद नांदी माताजी तैयार रहें.
श्रील प्रभुपाद की. श्रील प्रभुपाद, ऑन दिस ओकेजन ऑफ योर बर्थडे आई वुड लाइक टू डिस्क्राइब फ्यू ऑफ योर क्वालिटीज. जैसे प्रभु जी ने पहले ही बोला कि बर्ड की कैपेसिटी के अनुसार वो आकाश को नाप सकता है, ऐसे हमारा कैपेसिटी बहुत छोटा है इसलिए बहुत शॉर्ट ऑफरिंग है. प्रभुपाद, यू आर अ कंपैशनेट लीडर बिकॉज व्हेन डीलिंग विथ पीपल वी सी मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर इनटू द मूड ऑफ फॉल्ट फाइंडिंग, कि दूसरों के दुर्गुण हम ढूंढते रहते हैं. परंतु आपने हिप्पीज लोगों को हैप्पी बनाया, हिप्पी लोगों को अपने स्पिरिचुअल लीडर्स बनाया. आज उनकी वजह से ये संस्था आपके बाद भी, आप इस धरती लोक से अंतर्धान होने के बाद भी 40 साल हो गए, फिर भी यह संस्था बहुत अच्छे रूप से प्रगति कर रही है. ये आपके कंपैशनेट लीडरशिप की क्वालिटी है. यू हैव ट्रस्ट इन फॉलोअर्स. एक्चुअली कोई भी जो रिश्ता है, नाता है, या ये ट्रस्ट के ऊपर, विश्वास के ऊपर आगे बढ़ता है. और आपने ऐसे लोगों में विश्वास जताया कि जो लोगों को उनके खुद के फैमिली मेंबर्स, माता पिता, भाई बहन या हस्बैंड वाइफ, इनको भी विश्वास नहीं था, उन लोगों में आपने विश्वास दिखाया और वो लोग आज जग सारी दुनिया को विश्वास दे रहे हैं. प्रभुपाद, आप एक ऐसे श्री राम जैसे व्यक्ति है कि जो स्क्विरल और हनुमान इनमें भेद नहीं करते हैं, जिसका जो भी जितना भी सेवा रहे उसको आप पूरे भाव से ग्रहण करते हैं. उसका एक उदाहरण मुझे याद आता है जो आपके पुस्तक में मैंने पढ़ा, कि एक बाहर देश में एक जगह पे बहुत से ब्रह्मचारी और प्रीचर्स आपके सामने आए थे और वो अपना रिपोर्ट बता रहे थे, परंतु आपने उनके ऊपर तो ध्यान दिया ही, पर उसके बाद कॉर्नर में, कोने में एक फ्लावर पार्ट, माने फूल का गुच्छा जो बनाया हुआ था, उसको देख के आप बोले कि ये पुष्प गुच्छ किसने बनाया है, वो व्यक्ति को इधर बुलाओ. तो वो एक माताजी थी जो कि केवल मंदिर में फूल की सेवा करती थी, कभी झाड़ू पोछा करती थी, माने एक साधारण सी व्यक्ति थी भौतिक दृष्टि से देखेंगे तो. लाइम लाइट माने सामने आने वाली व्यक्ति नहीं थी, परंतु आपने उसकी भी यह जो खूबी है, ये जो विशेषता है, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया और उसका आदर सत्कार किया. तो इस रूप से, इस पास टाइम से हमको आपका यह गुण है कि जो आप डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, बल्कि जो भी व्यक्ति की जितनी भी कैपेसिटी है, जितनी भी क्षमता है, उस क्षमता से वह व्यक्ति अगर सेवा करता है, सेवा का प्रयास करता है, तो उसको आप सराहना देते हैं. और एक चीज है प्रभुपाद, कि हमने पढ़ा है कि ट्री कैन बी जज्ड बाय इट्स फ्रूट्स, कि कोई भी वृक्ष की जो परीक्षा होती है उसके फलों से होती है. और हम देखते हैं कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और बाकी के भी आपके जो शिष्य हैं, उनको देख के हमको और भी आपके बारे में आदर उत्पन्न होता है हमारे हृदय में, कि हमने तो आपको नहीं देखा है पर्सनली, इतना इंटरेक्शन नहीं हो पाया है, परंतु आपके जो शिष्य है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज और बाकी सब जयपताक स्वामी महाराज जैसे, तो इनको देख के हमारे हृदय में एक विश्वास, दृढ़ विश्वास और भगवान के प्रति और आपके प्रति एक प्रेम और भावना उत्पन्न होती है. और महाराज जी कहते हैं कि पेइंग अटेंशन टू डिटेल इज साइन ऑफ लव, कि छोटी छोटी बातों में भी ध्यान देना ये प्रेम की बात है। तो एक बाहर देश में शायद लंदन में एक माता जी थी कुलंगना माता जी की, जो कि अच्छे स्वीट्स बनाती थी, पेड़े बनाती थी। तो उनको भी परम पूज्य राधानंद स्वामी महाराज ने अपने प्रवचन में, जो कि हजारों लोगों के सामने, उनको सराहना की थी। तो ये आपके जो गुण हैं, आपकी जो लिगेसी, माता जी ने जैसे बोला कि ये आपके डिसाइपल्स, आपके जो शिष्य है वो कैरी फॉरवर्ड आगे लेके जा रहे हैं। तीसरा श्रील प्रभुपाद कि आपको जैसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का प्राइड या गर्व हरण किया, उस प्रकार आप भी अपने भक्तों में, शिष्यों में, ग्रैंड डिसाइपल्स में जो प्राइड, जो अहंकार आता है, उसको आप कभी कभी क्रश करते हैं। तो उसका एक उदाहरण है, एक माता जी, गौरंग प्रभु हमेशा ये प्रवचन में कहते हैं कि एक माता जी आपके लिए एक बार समोसे बना रही थी। तो एक समोसा आप जस्ट देखने के लिए गए कि कैसे बना रही है या टेस्ट कैसा है। तो जैसे एक समोसा तैयार हुआ आपने खा लिया, दूसरा हुआ खा लिया, ऐसा करके जितने भी माता जी समोसे बना रही थी उतने आप खा रहे थे। तो वो देख के वो माता जी को बहुत आनंद हुआ, उत्साह हुआ और थोड़ा सा गर्व भी हुआ कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, बहुत अच्छी स्वयंपाकी हूँ। तो उन्होंने आपको पूछा कि प्रभुपाद आपकी सबसे फेवरेट कुक कौन है? तो आपने उनको बोला कि मेरा सबसे फेवरेट कुक मैं खुद हूँ। तो इस प्रकार आप कभी कभी भक्तों के प्राइड या गर्व का हरण भी कर लेते हैं। आखिर में श्रील प्रभुपाद, मैं आपका ग्रैंड डिसाइपल बोल के एक आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो धरोहर आपने दी है, जो क्वालिटीज़ आपने दिखाई है, लीडरशिप क्वालिटीज़ और लोगों का केयर करने की क्वालिटीज़, भक्तों के साथ एसोसिएशन में कैसे रहने की क्वालिटीज़, और आपके शिष्यों में जो गुण आपने दिए हैं, जो हम देखकर इंस्पायर जो होते हैं, वो उन क्वालिटीज़ में से, उन गुणों में से थोड़ी सी मात्रा, थोड़ा सा अंश अगर हम में भी आ जाए तो हम भी आपकी सेवा में, गुरु महाराज की सेवा में, भक्तों की सेवा में, दासानुदास के रूप में सेवा करके। श्रील प्रभुपाद की
धन्यवाद। प्रेमचंद प्रभु, तो कुकिंग के से याद आया कि एक बार प्रभुपाद जी वृंदावन में थे, तो उनके जो गॉड ब्रदर थे, गुरु बंधु, उनको उन्होंने कहा कि मैं एक स्टोव पर आधे घंटे में 40 जनों का प्रसाद, पूरा दाल चावल और सब्जी बना सकता हूँ। तो गुरु बंधु बोले, इम्पॉसिबल, अशक्य है, असंभव। तो प्रभुपाद उनको बोले, तुमको देखना है मुझे करते हुए। तो उनका वो ये देखकर, हाँ, कॉन्फिडेंस देखकर वो बोले, नहीं नहीं, मैंने मान लिया, आप कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा। तो नांदी माता जी तैयार हैं? नांदी माता जी के पश्चात हरिप्रिया स्वामिनी माता जी। हाँ, गिरिराज प्रभु के ग्रुप से। हाँ, यस।
प्लीज एक्सेप्ट माई हम्बल ओबेसेंसेस श्रील प्रभुपाद। टुडे ऑन योर अपीयरेंस डे आई वॉन्ट टू ऑफर माई हार्टफुल gratitude to you. As I was counting my blissful moments in past 42 years, I had just few 8 to 9 blissful things, and that are as follows: yatras, association of all devotees, kirtans, morning programs, festivals, seva, reading Srimad Bhagavatam, distribution of books in December marathon, preaching programs, and deity worship. In all of this above mention, I am seeing your immense desire to pull out conditioned souls towards Krishna. It's your compassion, it's your desire, it's your help, it's your protection to help me to come out from my independent desire. Always a question crept in my mind, what is my existence for? Your target-hitting purports gave me my answers. Your teaching, your personal example, your determination, Your love for Krishna is exemplary. Your talks, morning walks, for me is beneficiary. Your bhajans, your chanting, preaching is noticeably different, as if pouring out love for the shackled souls. A person who truly loves Krishna can give Krishna to others. A person who has deep faith in Shastra can impart faith in others. A person who serves his Guru Dev order as his life and soul can only make his disciples do the same. Prabhupada, I don't have any qualification, but a desire to be engaged in some menial service in your great mission, to serve your devotees, your mission. Thank you to give me so much opportunities to serve. Thank you so much, Prabhupada. Jai Prabhupada.
Thank you so much, Haripriya Swamani Mataji. Aur ek announcement hai, important, urgent, critical. कि वो एक मारुति सुजुकी है 5888 5888 तो जिनकी भी है वाइट कलर की, हाँ, तो कृपया वहाँ से आप निकाल लीजिए, क्योंकि उसके भी पीछे बहुत सारी गाड़ी अटकियाँ हुई है. हरे कृष्णा. तो नंदी माता जी के पश्चात है रघुनाथ प्रिय प्रभु को मैं निवेदन करता हूँ कि वो तैयार रहें.
हरे कृष्णा. प्रभुपाद जी को शत शत प्रणाम और यहाँ पे उपस्थित सभी भक्तजनों को भी दंडवत प्रणाम. हम कृष्णा भावरण में अभी नए नए ही आए हैं और यूजुअली ऐसा होता है कि हम अपनी उम्र को लेके बहुत बोलते हैं कि आज उम्र हो गई है तो हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. पर जब हम यहाँ पे आए और जब प्रभुपाद जी के बारे में सुनना शुरू किया तो पहली जो चीज़ है प्रभुपाद जी, आपकी हमको इंस्पायर किया कि आप 70 साल की उम्र में, और ये चीज़ इसलिए और इंस्पायर किया जब हम 26 क्वालिटीज़ ऑफ वैष्णवों का पढ़ रहे थे तो उसमें जो कृष्ण एका शरणा वो जब आया तो हमें आपसे ज़्यादा बड़ा एग्जाम्पल कोई दिखाई नहीं दिया, क्योंकि आप 70 साल की उम्र में सिर्फ उनके भरोसे पे एक विदेश में चले गए, हाथ में भागवतम लेके, चंद पैसे लेके, उस उम्र में एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप किसी को भी नहीं पहचानते हैं. इससे ज़्यादा सरेंडर कृष्णा के प्रति और क्या हो सकता है. और फिर वहाँ पे आपने उन लोगों को प्रेरित किया जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, पर वो चीज़ आपने सोची सिर्फ इस विश्वास के साथ कि कृष्णा आपको साथ देंगे. तो हम जब इस्कॉन में आए और जो कृष्ण एका शरणा का जो बातें हमें बताई गई तो हमें पता चला कि अगर आपके इस नक्शे कदम पे हम थोड़ा सा भी हम लोग चल सकें तो शायद हम उस पद को प्राप्त कर सकेंगे जो आप हम सबको बताना चाहते हैं. मेरा इनके साथ रिलेशन ऐसा है कि हमारे घर में कोई बुजुर्ग नहीं है तो, और बंगाली हैं हम तो बंगाली में हमारे में दादू भाई बोलते हैं, तो मैं इनको दादू भाई करके एड्रेस करती हूँ. और जब भी हमारी कोई भी समस्या आती है जो हमें बुजुर्गों से गाइडेंस चाहिए तो मैं इनसे लेती हूँ, और पता नहीं इनसे हमें गाइडेंस मिलती भी है. इनका ऐसी ब्लेसिंग्स है कि इनकी गाइडेंस हमें मिलती है, और यही एक चीज़ है जो बहुत प्रेरित करती है कि आप आज भी हैं, नहीं है उसका कुछ वो नहीं है, आप आज भी हमारे बीच में हैं और हमें हमारा मार्गदर्शन करते हैं और हमें बताते हैं कि किस तरह हमें आगे बढ़ना है और किस तरह से अपनी समस्याओं का समाधान करना है. मुझे तो आपसे आपका बहुत ज़्यादा वो प्यार और वो लगाव और वो अपनापन मिलता है जब जब मुझे वो ज़रूरत होती है. इसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ. और इनकी हमेशा ये हम इस बात के लिए आपकी बहुत ऋणी रहेंगे कि आपने इस्कॉन जैसी संस्था की स्थापना की और उस संस्था की स्थापना में इतने सुंदर नियम रखे कि हम जैसे अधम जीव जो कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे घर में आर्च विग्रह आएंगे, हम विग्रह की पूजा करेंगे, हम उन्हें स्पर्श करेंगे, हम उनका श्रृंगार करेंगे, हम उनके लिए भोग बनाएंगे, ये हमारे
सपने से भी बाहर था, क्योंकि हमें ये पता था सिर्फ ये ब्राह्मण लोग ही कर सकते हैं, पर आपने वो चीज़ भी हम जैसे अधम जीवों को करने की सौभाग्य प्राप्त दिया और हमारे घर को मंदिर बनाया, एक घर में इतना सुंदर वातावरण बनाया, वो सिर्फ आपकी ही कृपा से है बना है। बस आपसे यही प्रार्थना है कि आप इस तरह ही कृष्ण का शरणा बनने के लिए, कृष्ण के प्रति समर्पित होने के लिए, कृष्ण भामरामृत में सदैव जुड़े रहने के लिए, और आपका जो मिशन है कि कृष्ण भामरामृत को जगत के कोने कोने में फैलाया जाए, उसमें हम जितना भी योगदान दे सकें, जिस रूप में भी दे सकें, वो दे पाएं और सदैव वैष्णवों की अंतिम सांस तक वैष्णवों की सेवा कर सकें, ये आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि हमारा जीवन भी सही रूप से आगे बढ़ सके और आपके पद चरणों में चलने का एक सौभाग्य प्राप्त हो जाए। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। जस्ट और एक अनाउंसमेंट है, ये गाड़ी है 2266 वाइट इंडिगो। प्रभुपाद जी सोच रहे होंगे ये बीच बीच में क्या आ रहा है, ट्रैफिक का अनाउंसमेंट क्यों हो रहा है, तो क्योंकि थोड़ा अर्जेंट है, तो कृपया आपके नम्र निवेदन, जिनकी भी ये गाड़ी है 2266 वाइट कलर की इंडिगो, तो कृपया उसको भी आप पार्किंग स्लॉट से निकाल लीजिए। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु।
श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। आज का दिन मुझे बहुत पसंद हो आता है, इसलिए कि बहुत सुंदर सुंदर भक्त लोग आके अपना अनुभव बताते हैं, कथाएं बताते हैं, जिसको अभी नहीं लेकिन कभी जब जिंदगी में तुम चलते हो या कभी ऐसा प्रसंग आता है जब तुम किसी इसमें घिरे हो, परेशानी में हो, या फिर कुछ ऐसा चाहिए जहाँ ये याद आके तुम्हें मार्ग मिलता है, प्रेरणा मिलती है, तो ये कथा है ये सब, इसलिए मुझे आज का दिन बहुत पसंद आता है, इसीलिए मैं दो कथाएं, एक या दो कथाएं बताऊंगा जो मुझे प्रेरणा भी देती है और शायद से सबके लिए भी प्रेरणा रहेगी। तो इसी तरह श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक हो या भागवतम हो, हर समय कुछ सूचक या कुछ इस तरह से बताते हैं जिससे हमें प्रेरणा, मार्गदर्शन हमेशा मिलती ही रहती है। तो इसी तरह एक मॉर्निंग लेक्चर में श्रीमद् भागवतम होने के बाद प्रश्न उत्तर के समय में एक गेस्ट आए हुए थे, उन्होंने बताया कि प्रभुपाद जी हमें कल की जो लास्ट अवतार है भगवान का, कल की अवतार उसके बारे में बताओ, उसमें क्या उपदेश मिलने वाला है हमें। तो श्रील प्रभुपाद बताए कोई उपदेश नहीं, सिर्फ कत्ल होने वाला है, ओनली किलिंग, नो मैसेज। तो बोले अरे बाप रे, तो फिर आपका जो इस्कॉन है और आपका जो संस्था है उसका क्या होगा, उसके लोगों का क्या होगा। तो श्रील प्रभुपाद बोले कि वो होने तक हमारे जो भी भक्त है, जो भी फॉलो करने वाले हैं, वो भगवत धाम जा चुके रहेंगे। अरे वो तो ये सुनकर तो ये पढ़कर तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अभी नहीं लेकिन ये तो भरोसा है कि कभी ना कभी हमारा उद्धार तो हो जाएगा। इसी तरह से एक बार श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक के लिए गए थे, तो वहाँ लीलावती माता जी थे, अपने बच्चों के साथ आई थी, उनके साथ उनका बेबी था जो कि पीछे पीठ पे कैरियर पे लिया था, और वो थोड़ा सा गाड़ी से निकलने में उनको दिक्कत हो रही थी। तो श्रील प्रभुपाद देखे और मन से मुस्कुराए और बोले कि बर्डन ऑफ लव, बर्डन ऑफ लव। तो वो बोले हाँ। तो फिर बोले कि आप ये जो बच्चा है किस तरह से लेना चाहिए, बंदर की तरह या बिल्ली की तरह, कैट वे या मंकी वे। तो वो समझे नहीं लीलावती माता जी, वो कुछ बोले नहीं। तो बोले कि बंदर वे मतलब इस तरह से कि बंदर का बच्चा जो होता है वो खुद माँ के पीठ पे चढ़ता है और फिर माँ उसको लेके चलती है, लेकिन बंदर का बच्चा खुद ही वीक रहता है तो उसका गिरने की संभावना बहुत होती है, जबकि बिल्ली वे मतलब बिल्ली की तरह इस तरह से होता है कि वो पूरा अपनी माँ पे निर्भर रहता है, तो माँ उसको अपने मुंह में पकड़ती है और वो लेके चलती है, तो कौन सा अच्छा है? तो फिर लीलावती माता जी समझ गए और वो बोले कि हाँ कैट वे बिल्ली की तरह, तो बोले हाँ बिल्कुल इसी तरह। तो फिर श्रील प्रभुपाद समझाने लगे कि योगी जो रहते हैं, मायावादी जो रहते हैं, वो अपने खुद के बल पे चढ़ने को मतलब भगवान को जानने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप में वीक रहते हैं तो उनकी गिरने की संभावना बहुत होती है। तो भक्त के जैसा रहना चाहिए जिसमें हम पूरे भगवान के ऊपर निर्भर रहे, तो वो हमें हम हाथ ऊपर करके भगवान की शरण ले तो हमें उठा लेते हैं। हरे कृष्ण, हरि बोल।
हरे कृष्णा, धन्यवाद रघुनाथ प्रिया प्रभु। एक बार एलन गिन्सबर्ग ने प्रभुपाद जी से पूछा, अरे ये जो आपके शिष्य हैं जो हरे कृष्णा करते हैं, उनका आगे क्या होगा? तो प्रभुपाद जी बोले, ये सब आध्यात्मिक जगत चले जाएंगे। फिर एलन गिन्सबर्ग पूछे, फिर हमारा क्या होगा? तो फिर प्रभुपाद जी ने उसकी आँखों में आँखें डाल के बोला, उसके बाद एलन, उसके बाद आपको मुझे खाना होगा और मुझे आपको खाना होगा। तो अभी मैं निवेदन करता हूँ निर्मल चंद्र प्रभु को कि वो आदरांजलि अर्पण करें। निर्मल चंद्र प्रभु है, संकर्षण प्रभु, संकर्षण प्रभु तैयार हैं, श्याम मोहन प्रभु, हरे कृष्ण, सौ साल की आयु है भक्ति करने के लिए।
हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के आज जन्मतिथि पर प्रभुपाद के दो गुणों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। पहला कि प्रभुपाद अपने जो शिष्य थे उनको अपने बच्चों के जैसे संभालते थे, मतलब उनके लड़के और लड़की के जैसा उनका ख्याल रखते थे, और प्रभुपाद समझते थे कि किसकी ज़रूरत क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं हमारे लड़के लड़कियाँ रहती हैं कि कौन सी किसका व्यक्तित्व कैसा है और किस बच्चे को किस समय प्यार की ज़रूरत है, किस समय डांट की ज़रूरत है, किस समय उनकी कौन सी ज़रूरत को पूरा करना है और किस समय हाँ बोलना है, किस समय नहीं बोलना है। उसी तरह प्रभुपाद भी अपने शिष्यों को भली भांति समझते थे, उन्हें पता था रहता था हमेशा कि उनका शिष्य किस आध्यात्मिक स्तर पर है और उस आध्यात्मिक स्तर से उनको और आगे बढ़ाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है और किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। तो एक बार का इंसिडेंस है जब प्रभुपाद हवाई में रुके थे, एग्जैक्ट याद साल मुझे याद नहीं आ रहा है, पर 10-15 दिन हवाई में रुके थे, जब सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज उनके पर्सनल सर्वेंट भी थे और उनके कुक भी, सेक्रेटरी भी। तो उसके बाद में प्रभुपाद जापान गए, वहाँ पर एक दिन रुके और फिर हांगकांग आए। हांगकांग में खास वो केवल अपने दो शिष्यों को मिलने के लिए आए थे, भूरीजन प्रभु और जगत तारिणी माता जी, और ख़ास उनको जो स्थिति में वो थे उससे उभारने के लिए, एक डिफ़िकल्ट स्थिति में थे क्योंकि उस समय प्रभुपाद के कुछ शिष्यों को एक अलग तरह से एडवाइस मिल रही थी कुछ अलग व्यक्तियों से, और थोड़ा सा ये मेन मार्ग से भटकन माना जा रहा था और प्रभुपाद उसका समर्थन नहीं करते थे, और भूरीजन प्रभु जगत तारिणी माता जी उस समय उस बहकावे में थे, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस थे उस फिलॉसफी से, तो उनको तारने के लिए वो खास हांगकांग गए और वहाँ पर एयरपोर्ट से ही उन्होंने फिर पूछताछ शुरू कर दी थी। और प्रभुपाद बहुत हैवी थे, मतलब सत्स्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि बहुत कड़ी से, ऐसा नहीं कि नरमी से, पर बहुत हैवीनेस से उन्होंने जगत तारिणी माता जी और
भूरीचंद प्रभु को उस समय डील किया वो सिचुएशन को, और जब एक दो दिन वहाँ हांगकांग रुके और उसके अंत में हर सेशन जो उनका था, मीटिंग रहता था, तो हर सेशन में प्रभुपाद बहुत फोर्सफुली उनको समझाते थे कि किस तरह से वो गलत है, किस तरह से जो फिलॉसफी चल रही थी उस समय की वो गलत है, और उस स्थिति से उन्होंने उनको बाहर निकाला, और एट द एंड ऑफ इट वो दोनों बहुत कन्विंस थे कि प्रभुपाद जो कहते हैं हमने उसी का पालन करना चाहिए। दूसरा व्यक्तिमत्व का पहलू बताना चाहूँगा कि प्रभुपाद का जीवन बहुत ही सरल था, और सरल जीवन रहते हुए भी प्रभुपाद एक अकेले अपने खुद के बलबूते पर और भगवान कृष्ण के शक्ति के द्वारा, शक्ति आवेश के द्वारा, अपने गुरु महाराज की आशीर्वाद के द्वारा वो एक पूरी वर्ल्ड वाइड संस्था चला रहे थे। तो ये वर्ल्ड वाइड इस्कॉन संस्था चलाते हुए प्रभुपाद को हर छोटी चीज़ के लिए भी उनके जो सारे शिष्य थे जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे थे, जीबीसी हेड्स थे, वो भी प्रभुपाद की सलाह लेते थे, उनका मार्गदर्शन लेते थे, और प्रभुपाद अकेले उन सब का मार्गदर्शन कर रहे थे। तो इस कारण मैनेजेरियल ड्यूटीज़ रहते हुए उनको काफ़ी बिजी भी रहते थे, पर फिर भी अपने जीवन में हर रोज़ प्रभुपाद किसी भी स्थान पर रहे पूरी दुनिया में मॉर्निंग वॉक के लिए जाते थे, और ये मॉर्निंग वॉक का उनका क्रम उन्होंने कभी नहीं तोड़ा, और हर रोज़ अपने पर्सनल सर्वेंट के द्वारा वो मसाज लेते थे। और प्रभुपाद ने बाद में ये बताया भी कि वो मॉर्निंग वॉक का रूटीन और मसाज जो करते थे उनके स्नान के पूर्व, दोपहर के स्नान, सुबह 11 बजे के आसपास के स्नान के पूर्व, जब दूसरी बार प्रभुपाद स्नान करते थे, तो उस समय ये दो रूटीन की वजह से उनकी शरीर की सेहत काफ़ी अच्छी रही, और इन दो रूटीन्स की वजह से उनके, प्रभुपाद बताते हैं, 5-10 साल उम्र और अधिक रही। और हम जानते हैं कि हर एक साल प्रभुपाद की उम्र का कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण रहा है इस्कॉन संस्था के लिए। तो इन सब बिजीनेस के बावजूद भी प्रभुपाद ने अपना सरल जीवन बनाए रखा, और हम प्रभुपाद के आभारी हैं कि उन्होंने किस तरह से हमें और इस पूरी दुनिया को उभारा और उतारा। थैंक यू श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। धन्यवाद श्याम मोहन प्रभु। उसके पश्चात मैं आमंत्रित करता हूँ अक्षय हरि प्रभु। तैयार है अक्षय हरि प्रभु के बाद अनंत राघव प्रभु तैयार हैं।
हरे कृष्णा। आज हम श्रील प्रभुपाद की एक विशेषता के बारे में मैं आज बात करूंगा। उससे पहले थोड़ी भूमिका ऐसी है कि जितने भी महान व्यक्ति इस विश्व में हुए हैं, वो उन्होंने कुछ ना कुछ ऐसा कुछ असंभव कार्य किया है जिसकी वजह से उनकी महानता का पता चलता है। किसी ने किसी देश के लिए किया है, समाज के लिए किया है, किसी ने मेडिकल फील्ड में किया है, कुछ ना कुछ चमत्कार किया है अपनों के लिए, अपने देश के लिए, अपनी भूमि के लिए, और कुछ असंभव कार्य किए हैं। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे महान व्यक्ति हैं जिन्होंने देश नहीं देख के, अपना कुछ जाति नहीं देख के, पूरे मानव समाज के लिए ऐसा चमत्कार किया। क्या यह चमत्कार है? क्या पहली बात तो ये है, क्या यह चमत्कार है? एक 70 साल का व्यक्ति कुछ रुपए लेके जाता है, और आज हम देखते हैं कि विश्व के, सिर्फ इंडिया के नहीं, पूरे विश्व के सभी देशों में, सभी शहरों में, मेन शहरों में, सभी शहरों में मैं बोलूँगा, एक इस्कॉन का मंदिर है। तो एक चमत्कार है, एक असंभव कार्य है, कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है वो। तो एक प्रभुपाद जी की एक विशेष एक क्वालिटी जो है, जो मैंने सुनी है, अनुभव किए है, उनके जो शुरू के शिष्य थे उनसे सुना है, कि ऐसा क्या था श्रील प्रभुपाद में कि जो वो पाश्चात्य देशों के लोगों को अट्रैक्ट कर पाए। तो उनमें से कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि हम शुरू में नए नए थे, हमें तो समझ में भी नहीं आता था प्रभुपाद बोलते क्या है। अभी हम लोग इंटरनेट देखते हैं, टीवी देखते हैं, केबल चैनल्स देखते हैं, कई लोग जाते भी हैं अमेरिका और यूके एंड ऑल दोज कंट्रीज, इतना इंग्लिश जानने के बावजूद 10 दिन लगते हैं उनको हमारी बात समझने में और हमें उनकी बात समझने में, वो बोल क्या रहे हैं और हम क्या बोल रहे हैं। और प्रभुपाद मतलब वो इतने साल पहले थिक सा बंगाली एक्सेंट, और अभी भी मैं उनके जो लेक्चर है सुनता हूँ तो थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, तो थोड़ी आदत पड़ जाती है तो हो जाता है, लेकिन हमें भी लगता है कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। तो उन लोगों को क्या मतलब क्या देखा उन्होंने ऐसा, तो वो बताते हैं कि प्रभुपाद को हम समझ नहीं पाते थे। प्रभुपाद बोलते थे सनातन गोस्वामी तो हम बोलते थे सैंड टैन, क्या बोल रहे हैं, मतलब गोस्वामी गोस्वामी क्या है क्या। लेकिन फिर भी उन लोगों ने फॉलो करना शुरू किया प्रभुपाद जी को, फॉलो करना, जो धरती पे आप चारों नियम का पालन मतलब ना करना ही एक लाइफ है, वहाँ पर वो छोड़ देना मतलब एक असंभव है। तो वो बताते हैं कि हमने ऐसा प्रभुपाद में क्या देखा, तो वो बताते हैं कि प्रभुपाद हमको चीट करने नहीं आए वहाँ पे, ही इज़ नॉट देयर टू चीट अस। तो एक विशेष हम सब लोगों के लिए एक विशेष विशेषता प्रभुपाद की जो हम सीख सकते हैं आज के दिन और अपनी लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, तो हम भी जो प्रभुपाद चमत्कार कर रहे हैं, कर चुके हैं और जो कर रहे हैं करेंगे अगले 10,000 वर्षों तक, उसमें भागी बन सकते हैं। वो क्या है, वो ऐसी चीज़, एक चीज़ जो मुझे ध्यान में आती है वो क्या है, वो ये है कि प्रभुपाद जो सोचते थे, प्रभुपाद जो बोलते थे और जो प्रभुपाद करते थे, इन तीनों चीज़ों में कुछ अंतर नहीं होता था। व्हाट ही यूज्ड टू थिंक, व्हाट ही यूज्ड टू स्पीक एंड व्हाट ही यूज्ड टू डू, देयर वॉज नो डिफरेंस इन दैट। तो उससे क्या हुआ, जब लोगों ने देखा कि प्रभुपाद ऐसा, ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है जो वो सोचता है और वो जो बोलता है, तो उससे उनका विश्वास पैदा हुआ। तो विश्वास से उन लोगों वो लोग आगे बढ़े और आज हम जहाँ हैं और हम जहाँ होंगे वो उस पर निर्भर किया। तो आज श्रील प्रभुपाद से हम मुझे ये सीख मिलती है, हम सबको, हम अपनी लाइफ में ये कर सकते हैं और हम देखेंगे वो चमत्कार, हम उसके भागी बनेंगे, बन सकते हैं कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं और जो हम करते हैं उसमें अंतर ना रखें, देखेंगे चमत्कार होंगे प्रभुपाद की कृपा से। श्रील प्रभुपाद की जय।
धन्यवाद अक्षय हरि प्रभु। अभी मैं आमंत्रित करता हूँ निर्मल चंद्र प्रभु, अपना आदरांजलि अर्पण कर सकते हैं। निर्मल चंद्र प्रभु के पश्चात संकर्षण प्रभु तैयार रहें।
नमो विष्णु प्रताय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। तो मैं आप सभी के बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, स्पेशली प्रभुपाद जी के। हम वर्तमान परिस्थिति में देख रहे हैं कि लोग ऐसा चाहते हैं। कुछ समय पहले 5-6 साल पहले एक आंदोलन आया था भारत में कि वो भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलन, और वो लोगों ने एक बड़े मैदान पर पंडाल डाल के फिर वहाँ उपोषण का वो सब किया था। तो उस समय पूरे भारत में ऐसी लहर चल रही थी कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो भ्रष्टाचारी मन से नहीं है। तो कैसे लोग चाहिए हमें, हम जब किसी ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में जाने के बाद अपना कार्य करने के लिए टेबल के नीचे से या टेबल के ऊपर से ही कुछ भी हमें पैसा ना देना पड़े। दूसरा है, हमें ऐसे जज चाहिए या ऐसे वकील चाहिए जो सच्चाई के लिए न्याय दे। ऐसे वकील नहीं होने चाहिए, जज होने चाहिए कि पैसा लेके जो आरोपी है उसको छोड़ के जो आरोपी नहीं है उसको ही आरोपी सिद्ध करें, या फिर किसी अस्पताल में आप जाए यदि आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी ट्रीटमेंट नहीं होगी, या फिर आपको 3 महीना 4 महीना रुकना पड़ेगा। यदि आपका किसी के साथ लगा है, समझो KEM हॉस्पिटल या JJ में जाना है आपको, तो वहाँ जाने के बाद यदि आपको ट्रीटमेंट लेनी है तो उसके लिए कोई बड़े व्यक्ति के साथ संपर्क नहीं है तो फिर आपकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। ऐसा ही आप सब लोग देखिए, आप किसी को कास्ट सर्टिफिकेट के लिए जाना है तो जब आप वहाँ जाते हैं तो आपको हमेशा आपसे कुछ पैसों की मांग रखी जाती है। तो इसके विरुद्ध में वो आंदोलन था कि ऐसे पॉलिटिशियंस होने चाहिए जो प्रामाणिकता से काम करे और पूरा सिस्टम ऐसा बनाए कि जो प्रामाणिक रहे। लेकिन मैं उस समय सोच रहा था कि इसका मतलब ऐसा है कि कोई भी पॉलिटिशियन साधु होना चाहिए, कोई भी वकील साधु होना चाहिए, कोई भी जज साधु होना चाहिए, कोई भी डॉक्टर साधु होना चाहिए, कोई भी मैनेजमेंट साधु होना चाहिए। ऐसा समाज होना चाहिए जहां जाति का भेद नहीं है। आप देखेंगे 10वीं तक हम सीखते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि कौन किस जाति का बच्चा है। हमें तब पता चलता है जब 12वीं के बाद एडमिशन होता है, और उस समय जब एडमिशन होता है तो फिर हमारे ग्रुप्स बनने लगते हैं और फिर हम एक दूसरे का द्वेष करने लगते हैं स्वार्थ के आधार पर, और फिर एक दूसरे के जाति को नाम देने लगते हैं। तो मैं उस समय सोच रहा था कि ये लोग जो चाहते हैं कि ऐसा पॉलिटिशियंस और ऐसा समाज चाहिए, तो ऐसा देने की व्यवस्था सिर्फ आज तो मेरे हिसाब से, आप सब लोगों को मालूम रहेगा और कुछ भी है, लेकिन मेरे हिसाब से आज ऐसी यदि व्यवस्था कहीं पे भी अवेलेबल है तो वो सिर्फ श्री प्रभुपाद जी ने क्रिएट की है। आप देख सकते हैं, आप इसमें से देख सकते हैं, किसी की जाति बता सकते हैं मुझे? कोई नहीं बता सकता। और आप देखिए, जो भी अपने इंस्पेक्टर्स बने हैं, अपने ड्यूटी इंस्पेक्टर बने हैं, आप उनका पूरा आज तक का इतिहास देखिए, उनका जीवन कैसा है। अपने अस्पताल के डॉक्टर देखिए, मुस्लिम पेशेंट्स, मैं अभी संके सर के साथ था तो मुस्लिम पेशेंट्स हमें बोलती है कि सर हमें ये अल्लाह के बंदे लगते हैं। डॉक्टर संखे मुस्लिम पेशेंट्स को अल्लाह के बंदे लगते हैं। क्यों लगते हैं मालूम है आपको? क्योंकि वो वैसा व्यक्ति है जो प्रभुपाद चाहते हैं, प्रभुपाद की कृपा से ऐसा निर्द्वेषी, मतलब उसको बोलते हैं मत्सर से मुक्त, ऐसे लोग निर्माण करने की कैपेसिटी प्रभुपाद जी ने हमें दी है। और मैं कल देख रहा था, वृंदा का डांस देखा मैंने कल, ये था ना अपना नाटिका चल रही थी अलग अलग, तो उसमें वृंदा नाम की एक लड़की है, अभी शायद वो आए कि नहीं मालूम नहीं, तो उन्होंने नृत्य किया था कल। तो आप सब लोग, आपको मालूम भी रहेगा वृंदा की माँ रशियन है और पिताजी भारतीय है, तो आप सोच सकते हैं ये तो गोरे लोग हैं, अफ्रीका में हम में कोई भी नहीं है ऐसे काले लोग हैं, लेकिन ऐसे काले लोगों में जो लोग सब कुछ हवा में पकड़े वाले, सब कुछ काली विद्या जानने वाले, ऐसे लोगों को, पुरुषों को छोड़ो, माताओं को प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण का थ्रेड दिया है, ब्राह्मण बनाया है। तो जो भगवान श्री कृष्ण और राम अपने जीवन में दिखा रहे थे कि मेरे यहाँ जाति के आधार पे या धर्म के आधार पे या फिर आपके लिंग के आधार पे या आपके पैसे के आधार पे कुछ भी भेदभाव नहीं होगा, वैसे ही श्रील प्रभुपाद जी ने साक्षात ऐसे बना के दिखाया है कि इस सृष्टि को यदि, इस धर्म, इस धरा को यदि आपको कुटुंब बनाना है तो सब लोगों को इस भेदभाव से ऊपर कैसे रहना चाहिए, रहना चाहिए आवश्यक है लेकिन कैसे रहना चाहिए, वो हमें उन्होंने सिखाया है। मुझे हमेशा याद आता है कि शिवाजी महाराज के समय में हमेशा ये परिस्थिति थी कि वहाँ 18 बलूतेदार, मतलब कोई किसी को जाति किसी को मालूम नहीं थी उनके समय, क्योंकि सब लोग हे राज्य भावे हे श्रींची इच्छा, श्री मतलब भगवान की इच्छा। तो वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने स्वराज्य बनाया जिसमें सब लोगों को किसी भेदभाव के बिना एक साथ रहने का जगह मिले, वैसे ही प्रभुपाद जी ने ऐसा राज्य बनाया जो पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त है, मतलब पूरे धरातल को व्याप्त है, जिसमें सभी रंग के, सभी देश के, सभी वर्णों के, सभी लिंग के, सभी वय अवस्था के, 2 साल से बच्चे से लेकर 92 साल के या 102 साल के बूढ़े व्यक्ति तक, सभी लोगों को एक साथ भगवान के सामने भक्त बन के रहने का यह है। तो इसमें से ही वो लोग आएंगे जो वो आंदोलनकारी लोगों को चाहिए ना, वो लोग इसमें से आ सकते हैं। बाकी तो मुश्किल है, लेकिन आप में से किसी को मालूम रहेगा और भी कुछ ऐसा चीज़ है तो आप उसको बता सकते हैं। लेकिन मैं प्रभुपाद जी के लिए इतना अवश्य कहना चाहूँगा कि प्रभुपाद जी, आपकी कृपा से हमारे जो भी मेरे सालिया, अभी 5 सालिया है, उसमें से 3 को जो बच्चे हैं, मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा, 1-2 बच्चे हैं नासिक के, वो नासिक मंदिर में कीर्तन कर रहे हैं, 6 साल का लड़का, और 1 साली है जो टोरंटो में कीर्तन कर रही है सब लोगों के सामने, 1 कुछ बच्चे हैं जो यहाँ ड्रामा कर रहे हैं। तो ये चीज़ देख के मुझे इतना अच्छा लगा कि प्रभुपाद जी ने ये फॉर्मूला हमें देके इतना उपकार किया है हमारे ऊपर कि हमारे बच्चे आज के आधुनिक युग में कहाँ होते थे, पब में ही होते थे जिनके पास इतना पैसा है, तो ये पब में जाने के बजाय ये लोग भगवान की सेवा में रत है, ये प्रभुपाद जी की कृपा है। तो इसलिए हम सब लोगों को प्रभुपाद जी के सदैव सदैव हमेशा के लिए ऋणी है हम लोग, और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि उनकी जो इच्छा है कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे धरातल पे भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो, और आप विशेष तरीके से हम देखते हैं अभी इस्कॉन का सूरज कभी डूबता नहीं है, हमेशा 24 घंटे इस्कॉन की जन्माष्टमी चलती। प्रभु जी ने बताया कि 6 महीने कृष्ण का जन्माष्टमी का उत्सव चला था, अभी 6 महीने तो नहीं है लेकिन हमारे यहाँ 24 घंटा जन्मोत्सव चलता है। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा है हमारे ऊपर, हम सब लोगों का दायित्व तो है कि हम लोग इस कृपा को समाज के यहाँ लेके जाए। हरे कृष्ण।
धन्यवाद निर्मल चंद्र प्रभु। संकर्षण प्रभु आए हैं तो अनंत राघव प्रभु को मैं निवेदन करता हूँ कि आदरांजलि अर्पण करें। वापस एक बार सोचना कि आप कृपया अपना निवेदन और श्रद्धांजलि 3 मिनट तक सीमित रखें, 3 मिनट के बाद बेल बजेगी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज बहुत ही विशेष और पावन दिन है और सब भक्त श्रील प्रभुपाद जी के सुंदर सुंदर गुणों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो मेरे मन में प्रभुपाद जी का एक गुण आता है, वो है पतित पावन। श्रील प्रभुपाद जी वास्तविक में उन्होंने पतितों का उद्धार किया, और जैसे हम देखते हैं कलयुग में भक्ति करना बहुत मुश्किल है, और इतना मुश्किल है कि आजकल लोगों की मंदिर में आने की संख्या कम हो रही है, लोगों को भगवान में श्रद्धा नहीं है, और ऐसे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने भक्तिमय जीवन में लाया है। तो ये प्रभुपाद जी विशेष पतित पावन है। प्रभुपाद जी की अनेक कथा है और उसमें से एक कथा जो मुझे बहुत प्रेरित देती है वो प्रभुपाद जी के एक शिष्य है जिनका नाम है हरिदास प्रभु, जो जब भी छोटे थे तो क्या करते थे, वो चोरी करते थे, तो नाना प्रकार की चोरियां इत्यादि करते थे और इसी कारण वो जेल में थे। तो एक बार जेल में जब वो थे तो किसी कारणवश उनके हाथ में प्रभुपाद का बैक टू गॉडेड मैगजीन लगा, और उनको पढ़ने की रुचि नहीं थी, वो ऐसे ही देख रहे थे, और फिर वहाँ पर उन्होंने प्रभुपाद जी का एक छोटा फोटो देखा, और वो फोटो देख के आकर्षित नहीं हुए। क्या देखकर आकर्षित हुए? प्रभुपाद जी के हाथ में घड़ी थी, वो घड़ी को देखकर, इतनी महंगी घड़ी थी, घड़ी को देखकर उनको ऐसा लगा कि चलो इस घड़ी को चुराना है। तो फिर उन्होंने पता किया और देखा मैगजीन के पीछे एक एड्रेस था, उस समय एड्रेस था वो आकाश गंगा बिल्डिंग का। तो प्रभुपाद जी गए, प्रभुपाद जी को मिलने के माध्यम से वो गए आकाश गंगा में, फिर देखा आकाश गंगा में तो प्रभुपाद जी नहीं है, बोले कि प्रभुपाद जी जुहू मंदिर में आएंगे, आप जाइए। फिर वो गए जुहू मंदिर में, तभी बोल नहीं सकते घड़ी चुराना है, तो बोले क्या सेवा कर सकते हैं, तो इसी बहाने सेवा करने लगे, गिरिराज महाराज और बाकी डिवोटीज के अंडर सेवा करने लगे। फिर किसी ने कहा कि प्रभुपाद जी हैदराबाद में पंडाल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो प्रभुपाद जी को मिलने के लिए हैदराबाद गए, और फिर इतने दौरान उन्होंने भगवान का नाम लिया, प्रसाद लिया, और भक्तों के संग में थोड़ा उनमें परिवर्तन हुआ, और जैसे ही उन्होंने प्रभुपाद जी को पहली बार देखा हैदराबाद में, तो उनके हृदय में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ, और देखा कि पूरे विश्व भर के लोग, पाश्चात्य देश के लोग, उनका परिवर्तन हुआ है, तो बहुत प्रेरणा मिली। तो फिर प्रभुपाद जी को मिले और प्रभुपाद जी भी चकित हो गए कि भाई इतने सारे पाश्चात्य देश के लोग आए कि ये लड़का कौन है। फिर पता चला, अरे वो तो बंगाली है। तो प्रभुपाद जी ने उससे बंगाली में बात किया, फिर हृदय से उन्होंने प्रभुपाद जी को बोला कि प्रभुपाद जी, मैं वास्तविक में आपको मिलने नहीं आया, आपकी घड़ी चुराने आया। तो सोचिए, कोई आपके प्रोग्राम में आता है लेक्चर में और उसकी नज़र आप पे नहीं, आपकी घड़ी पे हो, और बाद में वो आके बोलता है, प्रभु जी आपकी घड़ी चाहिए थी, तो हम क्या बोलेंगे उसको? हम उस व्यक्ति को तुरंत जज करेंगे कि भाई किस भावना से आया है। लेकिन प्रभुपाद जी ने यहाँ पर क्या किया, अपनी घड़ी निकाली, अरे घड़ी के लिए आए हैं ये लोग, घड़ी, और वो व्यक्ति को अपनी घड़ी दे दी। सोचिए क्या प्रभुपाद जी का भाव है, कि जो व्यक्ति चोरी करने के भाव से आ रहा है, उस व्यक्ति को भी प्रभुपाद जी ने जो चाहिए था वो दिया, न केवल घड़ी दी लेकिन कृष्ण भावनामृत की भक्ति दी। और आज प्रभुपाद जी के वो दीक्षित डिसाइपल है जिनका नाम है हरिदास प्रभु। हरि वो, आपने इस्कॉन के बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो इस्कॉन का एक चैनल है या फिर ITV करके है, उसके हेड है, जुहू मंदिर में रहते हैं हरिदास प्रभु। तो इस प्रकार से अनेक लोगों को प्रभुपाद जी ने तारा है, विशेष करके भारतीय तो ठीक है, लेकिन पाश्चात्य देशों के लोगों को। जैसे प्रभुपाद जी ने जब इस्कॉन शुरू किया, प्रभुपाद जी रहते थे सैन फ्रांसिस्को में, जो उस समय का ड्रग कैपिटल था, और वहाँ पर ये जो हिप्पी लोग थे ऐसी बुरी अवस्था में थे कि प्रभुपाद जी ऐसे लोगों के लिए प्रसाद बनाते थे। तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम था स्टैनली, वो 25 चपाती खाते थे, और प्रभुपाद जी ऐसे अनेक लोगों के लिए कुकिंग करते थे, और ये लोग प्रसाद खाने के बाद प्लेट छोड़ के ऐसे ही चले जाते थे। प्रभुपाद जी न केवल प्रसाद बनाते थे, उनका प्लेट धोते थे और फिर बाकी सब परिस्थिति ये करते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी ने अनगिनत लोगों का उद्धार किया है, और केवल ये पतित पावन का जो प्रभुपाद जी का जो भाव है, उसके वजह से आज इस्कॉन पूरे विश्व के हर एक कोने कोने में है। तो ये प्रभुपाद जी की विशेष महानता है, और वही गुण हम प्रभुपाद जी के शिष्यों में देखते हैं। मधु संप्रदाय के एक सन्यासी थे, वो प्रभुपाद जी को गुणगान करने में बोल रहे थे कि यू हैव डिस्ट्रीब्यूटेड नेक्टर एज इफ इट इज वाटर। वो बोलने लगे, क्या प्रभुपाद जी ऐसे महान संत हैं, उन्होंने अमृत को मानो पानी के जैसे वितरित किया है। तो ये प्रभुपाद जी की विशेषता है, और आशा करते कि इसी प्रकार से प्रभुपाद जी की कृपा रहे और जग भर में इस्कॉन और चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है वो वितरित होते रहे। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की
जय। धन्यवाद अनंत राघव प्रभु। तो निताय चैतन्य प्रभु को मैं निवेदन करता हूँ कि वो आदरांजलि अर्पण करें। निताय चैतन्य प्रभु के बाद युगल प्रेम प्रभु तैयार रहे।
हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद भागवतम च्या 11वा स्कंधामध्ये एक सुंदर श्लोक येतो, भजंती यथा देवान देवान अपि तथैव तान, छायैव कर्म सचिवा साधव दीन वत्सला। हा श्लोक सांगतो की देवता आणि साधू याचा काय फरक आहे। भजंती यथा देवान, जसं आपण देवतांची पूजा करतो त्याच प्रमाणात देवता आपल्याशी आदान प्रदान करतात, पण का? कारण ते कर्म सचिव आहेत, ज्या प्रमाणात आपण कर्म करतो त्या प्रमाणातच आपल्याला काय देऊ शकतात। पण साधू कोण आहेत? साधू हे दीन वत्सल आहेत, अत्यंत दीन जे आहेत, जे कुठल्या प्रकारे सेवा करू शकत नाहीत, कुठल्या प्रकारे काय अर्पण करू शकत नाहीत, त्या लोकांचे उद्धार साधू करतात। तर साहजिकच हा श्लोक जेव्हा मी ऐकला, असा साधू कोण असेल आपल्यामध्ये? पहिलं उत्तर आलं श्री प्रभुपाद। का दीन वत्सल म्हणजे काय? आत्ताच अनंत राघवपर्यंत खूप सुंदर सांगितलं, पतित पावन। श्री प्रभुपाद पतित पावन होते। दीन वत्सल म्हणजे काय असतं? तर कथा मी ऐकली होती, परमपूज्य इंद्रदेव स्वामी महाराज यांनी प्रभुपादांचे जे स्मृती सांगितल्या आहेत त्यामध्ये त्यांनी गोष्ट सांगितली होती। एका मंदिरात श्री प्रभुपाद बसले होते क्लास देत, आणि सगळे भक्त बसले होते। एक व्यक्ती आला, अत्यंत घाणेरडे कपडे घातलेला, काळा असलेला, केस विचारलेले होते, अंगो कदाचित महिनाभर केलं नसेल, असा व्यक्ती तो आला आणि तो त्या क्लासमध्ये घुसला आणि श्री प्रभुपादांच्या चरणापाशी जाऊ लागला, त्याचे चरण स्पर्श करू लागला। साहजिकच भक्त लोक श्री प्रभुपादांच्या चरणाला स्पर्श करू देत नव्हते कोणाला। त्या भक्तांनी आढळलं की नाही, तू करू शकत नाही स्पर्श चरणाला त्यांच्या। तर प्रभुपाद म्हणले त्याला येऊ दे। तो भक्त आला, त्या केसातनं प्रभुपादाने हात फिरवला आणि कम माय डिअर बॉय सिट हिअर, ये बस इथं, असं प्रेमाने त्याला कुरवाळलं। त्यानंतर क्लास संपला, साहजिकच भक्त लोक त्याला काढायला तयार होईना, कारण का प्रभुपादांनी हात ठेवला त्याच्यावरती. तो मंदिरात जायलाच तयार नाही, तो मंदिरात राहू लागला. मंदिरात राहिल्यावर काही दिवस भक्तांच्या संघामध्ये राहिल्यावर तो पुस्तक वितरण करू लागला, आणि त्या मंदिराला तो सर्वात जास्त पुस्तक वितरण करणारा भक्त झाला प्रभुपादांचा केवळ हात ठेवण्यामुळं. हे प्रभुपादांची दीनवत्सलता आहे. एका दीनाचा उद्धार श्रील प्रभुपाद कसा करतात, त्याच्याकडे हात ठेवण्यामुळं तो एक व्यक्ती जगातला सर्वात मोठा, त्या गावातला सगळ्यात मोठा पुस्तक वितरक झाला. आता दीनवत्सल ऐकलं की मला अजून एक डोळ्यासमोर येतं की पूर्वीच्या काळी आपल्या देशाची ओळख जी होती त्या तिथं दीन म्हणून होती. भारताकडं जग हे अत्यंत दीन लोकांचा देश, गरीब लोकांचा देश, पतित लोकांचा देश म्हणून पाहिलं जायचं. पण प्रभुपादांनी ही ओळख खोडून काढली आणि भारत हा गरीब देश नाही आहे, भारत हा देणाऱ्यांचा देश आहे. भारत हा घेणाऱ्यांचा देश नाही, भारत देऊ शकतो, सर्व जगाला भरभरून देऊ शकतो असा देश आहे, अशी ओळख निर्माण केली. मराठीमध्ये एक कवी आहेत साने गुरुजी, देशभक्त कवी आहेत. सुंदर कविता त्यांनी लिहिली आहे, बलसागर भारत हो विश्वात शोभनी राहो. त्यात सुंदर कडवं येतं एक. त्यात साने गुरुजी असा आशावाद व्यक्त करतात, ही माय थोर होईल वैभवे दिव्य शोभेल, जगतास शांती देईल तो सोन्याचा दिन येऊ. मला अभिमानानं सांगायचं वाटतं की तो सोन्याचा दिवस म्हणजे दुसरं दिवस असून या महात्म्याचं पृथ्वीवरचे अवतरण आहे. कारण का ही माय थोर कधी होईल, ज्यावेळी आपली खरी संस्कृती आहे ही जगासमोर वितरण केली जाईल. या महात्म्यानं या देशाला थोर बनवलं हे सांगून की हा घेणाऱ्यांचा देश नाही, हा देणाऱ्यांचा देश आहे. आम्ही जगामध्ये देण्यासाठी आलो आहोत, घेण्यासाठी आलेलो नाही आहोत. आपल्या देशाला त्यांनी थोर बनवलं. वैभव दिव्य शोभेलं, खरं वैभव काय देशाचं? आपल्या देशाचं खरं वैभव आहे आध्यात्मिक संस्कृती. ही खरं वैभव आपल्या देशाचं आहे. अख्ख्या जगाला त्यांनी आपले वैभव दाखवून दिलं की कसा भारत हा वैभवी देश आहे. प्रभुपाद आपल्या देशातल्या लोकांना सांगायचे की तुम्ही का सुद्धा गरीब समजता, का सुद्धा दीन समजता, तुमच्याकडे कृष्ण आहे, तुम्ही जगाला कृष्ण देऊ शकता. जर तुम्ही जगाला कृष्ण दिला तर तुम्ही खरे वैभवही बनू शकता. हे वैभव आपल्या देशाचं त्यांनी सगळ्या जगाला सांगितलं. आणि जगतास शांती देईल, संपूर्ण जगाला शांती देणारी इस्कॉन संस्था श्री प्रभुपादांनी स्थापन केली. श्री प्रभुपाद म्हणतात की जगाला शांत करण्यासाठी जगानं संयुक्त राष्ट्र स्थापन केलं. पण जसं संयुक्त राष्ट्र स्थापन झालं जगामध्ये झेंडे वाढत चाललेत. पण इस्कॉन अशी संस्था आहे जे सगळ्या जगातील लोक एकत्र येऊन खऱ्या अर्थानं भगवान श्रीकृष्णाची भक्ती करू शकतात. आणि श्रीकृष्णाची भक्ती ही खरी शांती आहे. गीतेमध्ये भगवंत म्हणतात की जोपर्यंत भगवंतांना सर्वस्व अर्पण करत नाही तोपर्यंत शांती शक्य नाही आहे. तर अशा या महात्म्याच्या चरणी एवढीच प्रार्थना आहे की जोपर्यंत जीवन आहे तोपर्यंत कुठल्याही पूजाला प्रतिष्ठेवना त्यांची हातून सेवा घडते. धन्यवाद.
धन्यवाद नेताय चैतन्य प्रभु. तो युगल प्रेम प्रभु के पश्चात मैं निवेदन करता हूँ, गौरांग दर्शन प्रभु तैयार हैं.
श्रील प्रभुपाद की जय. दो दिन पहले मैं जब घर पे गया था तो मेरी माँ से मिला, तो माँ ने कहा कि एक बॉक्स में से वो आठवां स्कंद निकाल के दे दो. और उसी बॉक्स के बाजू में और एक बॉक्स था. मैंने पूछा, माँ को बोला कि ये इसमें क्या है? उसने कहा कि इसमें पुरानी किताबें हैं. तो पुरानी किताबों को मैं निकालने का प्रयास कर रहा था और अंदर के साइड में सुख सागर, रामचरित मानस वगैरह था, और उसमें भगवद्गीता भी था जो मेरे पिताजी ने 1970 में घर में लेके आए थे. और प्रभुपाद जी, आपकी जो किताबें हैं वो टाइम बॉम्ब है. वैसे बॉम्ब ऐसा कंसेप्ट है जो एक्सप्लोड करता है, लेकिन आपके जो भगवद्गीता हैं, आपके जो किताबें हैं वो एक्सप्लोड नहीं करते, तो भक्तिमय जीवन के जो रहस्य हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं. तो और इसका बाद में मेरे को, मैं जब रिकैप कर रहा था तो मुझे पता चला, जब मैं पहली बार इस्कॉन जुहू मंदिर गया था तो वहाँ पर जब आपको देखा तो मुझे जो स्कूल कॉलेज के जो दिन थे, स्कूल के जो दिन मुझे याद आ रहे थे कि जब माँ मेरी भगवद्गीता पढ़ती थी तो उसमें के जो पिक्चर्स है वो मैं देखता था, और उसके साथ साथ आपका भी फोटो देखा. और जब मैं पहली बार जब जुहू गया था तो उस वक्त मुझे अचानक क्लिक हो गया कि आपकी जो जो भगवद्गीता है वो मेरी माँ पढ़ने का प्रयास करती थी और वही संस्कार हमें देने का प्रयास कर रही है. तो इसका और आगे आगे चल के मैंने देखा कि जब मैं भक्ति में आया, भक्ति में आने के बाद घर में जितने भी व्यक्ति हैं उनका भी उद्धार हो रहा है. तो मेरे जब पिताजी का जब देहांत हुआ, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ और उस वक्त जब राधा गोपीनाथ मंदिर की जो राधा रानी है उनके उनका जो गार्लैंड है वो अंतिम संस्कार के समय में काम में आया, और इसके अलावा जो चरणामृत है वो भी मेरे पिताजी को पीने के लिए मिला था। और इसके बाद मेरी जो माँ है, मेरे भाई का भी जब अंतिम संस्कार हुआ, डेथ हुआ, उसके बाद में मेरी माँ अकेली है। तो 4 साल से मेरी माँ का एक ही आधार है, वो है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम 4 साल में वो पढ़ रही है कंटिन्यूअसली, इसके अलावा चैतन्य चैतामृत पढ़ रही है। तो कल मैं जब बात कर 2 दिन पहले जब बात कर रहा था अपनी माँ से, तो मैंने कहा कि तुम्हारा अभी 80 साल का उम्र है और इस 80 साल के उम्र में तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होता है क्या? तो उसने कहा कि मेरा जो असली आधार है वो है श्रीमद् भागवतम और प्रभुपाद जी की जो किताबें हैं वो असली आधार है। क्योंकि बुढ़ापा एक ऐसी चीज है जिसमें व्यक्ति जो होता है हेल्पलेस और होपलेस हो जाता है और निराशावादी और निराधार। लेकिन वही जो प्रभुपाद जी के जो पर्पट्स है, प्रभुपाद जी के जो किताबें हैं, वो किसी के भी जीवन में आशा प्रदान कर सकते हैं। और इसके अलावा उसका जो असली आधार दे सकते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जब मैं अपनी माँ से पूछा कि मतलब मेरी माँ कह रही थी कि मेरा भी उम्र हो रहा है, 80 साल का उम्र है, कब बुलावा आएगा पता नहीं, मालूम नहीं मैं सेकंड टाइम भागवतम कंप्लीट कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो मैंने कहा कि कम से कम तुम ऐसा कर लो, श्लोक और ट्रांसलेशन पढ़ लो। तो मेरी माँ कहती है कि असली जो अमृत है वो कहाँ पर है? प्रभुपाद जी के तात्पर्य में। तो प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य है वो इतने महत्वपूर्ण है, किसी भी व्यक्ति को पूरा आधार दे सकते हैं, आशा दे सकते हैं। और कुछ मतलब जब भागवतम मैंने जब अपनी माँ को दिया था, उसके पहले मेरी माँ टेलीविजन पे, जैसे आत्मा चैनल है, संस्कार चैनल है, उसमें भागवत सप्ताह देखती थी। लेकिन जैसे ही उसको भागवतम मिला उसके सारे सप्ताह बंद हो गए, टेलीविजन पे जो सप्ताह है वो देखना बंद कर दिया। बोले कि ये तो केवल मनोरंजन करते हैं, ये लोग जो हैं मनोरंजन करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने असली सिद्धांत तत्व तात्पर्य में दिया है। तो ऑल ग्लोरी टू श्रील प्रभुपाद, हम आपके बहुत ऋणी हैं श्रील प्रभुपाद कि आपने हमें ऐसे जीवन से बचाया है जिसमें गोते ही गोते लगाना पड़ता है। तो और हमारा जो जीवन था इस्कॉन में आने के पहले एक ऐसे जहाज के जैसा था जिसमें जिसको कोई रडार नहीं है, जिसको कंपास नहीं है, और हमें इस बात का भी पता नहीं था कि हमें असली मास्टर कौन है, हमारे असली पति कौन है। तो जैसे भारतीय स्त्रियां अपने गले में मंगलसूत्र पहनती हैं, उसी प्रकार आपने हमारे गले में तुलसी का जो मंगलसूत्र वो पहना दिया है। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।
धन्यवाद युगल प्रेम प्रभु। उसके पश्चात गौरांग दर्शन प्रभु को मैं आमंत्रित करता हूँ कि आदरांजलि अर्पण करें। उसके पश्चात शिवानंद श्याम प्रभु तैयार रहे।
हरे कृष्ण। बिफोर 1965 श्रील प्रभुपाद हैड वन इनिशिएटेड डिसाइपल एंड आफ्टर 1965 प्रभुपाद हैड अबोव 4000 इनिशिएटेड डिसाइपल्स। And before 1965, Prabhupada had 3 books. After 1965, he has more than 60 books. And before 1965, hardly anyone could imagine that Prabhupada would be a leader of a worldwide movement. But after 1965, Prabhupada has established an international society where people of different countries can practice Krishna consciousness. And before 1965, Prabhupada has never stepped out of India. But after 1965, Prabhupada circled the globe at least 11 times, establishing a worldwide society. So, although it seems that the entire success that Prabhupada had was mainly in the last about a decade of his life, there were 4 decades of preparation to attain this success. So, that 4 decades of preparation consists of several failures, but they are not actually failures. That is also success. So why it is success? Because that success of Prabhupada in that 4 decades of preparation is his consistency in attempting for success. So in the first cant of Srimad Bhagavatam, second chapter, sixth shloka, so how a devotee should practice devotional service is mentioned. Ahaituki apratihata yayatma suprasidati. The success or advancement in devotional service depends on the purity of our intent and consistency of our attempt. So ahaituki means no internal motives, no selfish agendas, no premeditated expectation of benefits, material benefits. So ahaituki. So Prabhupada's intent was pure, just to spread Krishna consciousness. And secondly, consistency of attempt, that is apratihata. So uninterrupted. Although Prabhupada was failing in various ways, but still he was very consistent in attempting to fulfill the instructions of his guru. And the success is not only his purity of intent and consistency of attempt, and it is mainly dependent on his dedication to the instructions of his guru. Prabhupada himself writes in that beautiful purport of Yatpada Pankaja Palasa Vilasa Bhaktya. There he says, our desires for sense gratification are like ripples on river that will never stop. But if the river meets the ocean, the oceanic tides will overwhelm these insignificant ripples and they don't exist practically. Similarly, the desires to serve Krishna, the desires of a pure devotee to render service to Krishna are like oceanic tides, and our desires for sense gratification are like insignificant ripples on river. So when we align our life and our desires in alignment with a pure devotee's desires, one attains all success. Yasyanu vrittya krutino babhuvima. So the success in life depends on our alignment with the instructions of Guru and Krishna. Prabhupada has practically demonstrated this dedication to Guru's instructions throughout his life, and he inspired his disciples and followers also for such a dedication towards Guru and Krishna's desires. So Harvey Cox, in his introduction to Leelamrita, Srila Prabhupada's Leelamrita, he says that Prabhupada is unique and original, and he is also not original. He is not original in the sense that he has not given anything of his own. He is just representing an age-old tradition of Gaudiya Vaishnavism, which is actually being practiced by several generations of Vaishnavas. And he is original in the sense that he has a very unique way of presenting it, just according to the mentality and mood of the current audience that he is addressing to. He presented all the scriptural knowledge into a language that the whole world can understand. Thus he is original and not original also. So he is original in the sense that he has his own flavor, and he is not original in the sense that he is just following the instructions of his guru. So seeking the inspiration of Prabhupada and his whole life, what he has demonstrated, so let us also try to imbibe this mood of being consistent in our attempts to please Guru and Krishna, and pure in our intents in our endeavors to please Guru and Krishna. Then one can get success. Hare Krishna.
Hare Krishna. So Gurudas Prabhu once opened an old trunk of Prabhupada, and he found some documents regarding League of Devotees. So Gurudas Prabhu was curious. He asked Prabhupada, what was this League of Devotees? Prabhupada looked at him and said, oh, it was just me. तो शिवानंद श्याम प्रभु को मैं आमंत्रित करता हूँ और उसके पश्चात गंगा नारायण प्रभु तैयार रहे।
श्रील प्रभुपाद की मेरा फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी नहीं है, मैं उस पर फिर भी मैं थोड़ा मोटा लिखने के लिए मैं कोशिश किया, कुछ अपराध है तो क्षमा कीजिए। आपका गुण का आदि अंत नाही, करुणा मूर्ति सदा। आपका गुण का आदि अंत नाही, करुणा मूर्ति सदा। संसार हमको दहन करे बचाने के लिए आप आया, आपका गुण का आदि अंत नहीं, करुणा मूर्ति सदा गौरवानी को पृथ्वी फैलाना, कलयुग में आपका अवतार गौरवानी को पृथ्वी में फैलाना, कलयुग में आपका अवतार नगर ग्राम में अभी भी प्रचार हो रे आपका द्वारा, आपका गुण का आदि अंत नाही, करुणा मूर्ति सदा हम तो हमेशा माया का चिंतन में मधुमते जैसे रहते, इंद्रिय तृप्ति में हमेशा डूबाए भक्ति बुद्धि इच्छा नाही, आपका गुण का आदि अंत नाही, करुणा मूर्ति सदा सत्यम दिशति अर्थितम अर्थितोनुनाम नैवाततो यत् पुनरर्थितायतः स्वयं विदत्ते भजतामनिच्छताम् इच्छाभिदानां निजपादपल्लवम् जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्रहायेह चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य आपका गुण का आदि अंत नाही करुणा मूर्ति सदा आपका गुण का आदि अंत नाही करुणा मूर्ति सदा वैष्णव का कृपा से आपका चरण में आश्रय मिला हमको भक्ति वेदांत तात्पर्य महिमा से भक्ति में इच्छा आया आपका गुण का आदि अंत नाही करुणा मूर्ति सदा ध्रुवा दृढ़ से कम समय में मिलो उनको भगवान ध्रुवा दृढ़ से कम समय में मिलो उनको भगवान आपका दृढ़ता से कम समय में दिया सबको भगवान आपका दृढ़ता से कम समय में दिया सबको भगवान आपका गुण का आदि अंत नाही करुणा मूर्ति सदा सभी शास्त्र का सारो उपाय लेके हरि नाम संगीत फैलाया सभी शास्त्र को सारो उपाय लेके हरि नाम संगीत को फैलाया बद्ध जीवन का उद्धार होने के भक्ति संस्कार को दिया बद्ध जीवन का उद्धार होने के भक्ति संसार को दिया आपका गुण का आदि अंत नाही करुणा मूर्ति सदा आदो श्रद्धा से दृढ़ श्रद्धा बना ये हमारा प्रार्थना आदो श्रद्धा से दृढ़ता श्रद्धा बना ये हमारा प्रार्थना दिव्य दिन में हमारा आप रात को क्षमा करे दे दो सेवा, दिव्य दिन में हमारा अपराध को क्षमा करे दे दो सेवा, आपका गुण का आदि अंत नाही करुणा मूर्ति सदा, आपका गुण का आदि अंत नाही करुणा मूर्ति सदा, जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा श्रील प्रभुपाद की जय।
तो शिवानंद श्याम प्रभु का तीन बार हम हरि बोल बोल के धन्यवाद व्यक्त करेंगे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो लगता है भक्ति विनोद ठाकुर के इंस्पिरेशन से उन्होंने ये ऐसे कवितापूर्ण गीत सादर किया है। तो गंगा नारायण प्रभु के पश्चात निमाय लीला प्रभु को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो तैयार रहें।
हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय। कुछ दिन पहले यहाँ पे प्रभु दुराधना स्वामी महाराज ने एक लेक्चर दिया था जिसमें बताया कि देवकी को किसने बचाया। तो कंस मारने जा रहा था और वसुदेव ने प्रण किया कि मैं सारा पुत्र आपके समीप समर्पण कर दूंगा। तो महाराज कह रहे थे कि वसुदेव का चरित्र ही देवकी का रक्षण किया। तो जब आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी साधारणतः झूठ नहीं होता है, किंतु जब अष्टम संतान हुआ तो कंस को लगा कि अरे पुत्र होने वाला था पुत्री कैसे हो गया। तो उसको लगा कि आकाशवाणी भी झूठ होता है कभी कभी, किंतु उसको तिल मात्र संदेह नहीं हुआ कि वसुदेव ने झूठ बोला होगा या वसुदेव ने अपना चरित्र में कोई खोट है करके। किंतु वसुदेव ने अपना परम समर्पण दिखाया। तो यहाँ पे समझ में आता है कि प्रभुपाद का जो चरित्र है वो चरित्र के चरित्र को देखकर कई सारे लोग उनसे प्रेरणा प्राप्त किए हैं। तो भगवद गीता में कहा जाता है कि एजुकेशन कल्चर एंड डिवोशन इनके माध्यम से ज्ञान का प्रभाव होता है, ज्ञान का संरक्षण होता है, ज्ञान का विकास होता है और उस ज्ञान का विकास का चरम सीमा जो होता है वो चरित्र का प्रदर्शन होता है। तो प्रभुपाद न केवल एजुकेशन कल्चर एंड डिवोशन के माध्यम से दर्शाया बल्कि उन्होंने अपने स्वयं के चरित्र में दर्शाया कि और हम जैसे देखते हैं कि कई सारे जो बड़े बड़े लोग एकेडमिशियन बहुत बड़े बुद्धिजीवी हैं, बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने प्रभुपाद को अपना समर्पण किया, अपना जीवन समर्पित किया, तो इससे कई सारे लोग भी देखे जाते हैं कि कई सारा समय के बाद पहले कुछ लोग आके प्रभुपाद को देखते थे, साल भर देखते थे, कई साल देखते थे कि इनके चरित्र में कोई खोट नहीं है, इनका चरित्र में कोई दोष नहीं है, इनको कभी भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता, तो उसके बाद लोग समर्पण करते थे। तो ये जो चरित्र है प्रभुपाद का एक बहुत बड़ा गुण आता है और सबसे बड़ा जो गुण है वो समर्पण का चरित्र, जो हर किसी चीज़ को, हर किसी वस्तु को, हर किसी जीव को किस प्रकार से कृष्ण के संबंध में लाया जाए यही उनका निरंतर चिंतन रहता था। एक बद्ध जीव का प्रवास बद्ध परिस्थिति से लेकर शुद्ध परिस्थिति तक कैसे उसका प्रवास हो उसका प्रभुपाद ने अपने पुस्तकों में स्टेप बाय स्टेप उसका इन्यूमरेशन किया हुआ है, डिटेलिंग किया हुआ है। तो जो भी नियम हमें पालन करने के लिए प्रभुपाद ने दिया है, हमें कभी कभी लगता हो कि ये सब नियम बंधन है या ये सब नियम हमें बांध के रखा है, हमें फ्री होना चाहिए, हमें मुक्ति की आवश्यकता है। जैसे उदाहरण स्वरूप कहा जा सकता है कि अगर कोई बहुत बड़ा मेला लगा हो और बच्चे को चलने की इच्छा है लेकिन माँ उसको उठा के गोद में रख देती है, तो बच्चे को भले ही मुक्ति या फ्रीडम की आवश्यकता महसूस होती हो, किंतु वो जो माँ का उसको गोद में उठा के जकड़ के रखना बंधन महसूस होता हो, किंतु वो बंधन नहीं है, वो सुरक्षित, वो सुरक्षण है। तो ये जो नियम हमारे लिए प्रभुपाद ने दिया है, ये नियम प्रभुपाद कहते थे कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रीडम, तो ये नियम हमें मुक्ति प्रदान करेगा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से। मुक्ति प्रदान करने के लिए प्रभुपाद ने जो हमें मार्गदर्शन दिया है उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनके भक्तों का, उनके शिक्षण का। जय श्री प्रभुपाद।
धन्यवाद गंगा नारायण प्रभु।
जय श्री प्रभुपाद। आज इस पवित्र दिन पे मैं आपको अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। यहाँ पे गोवर्धन इको विलेज में रहने और सेवा करने का मौका दिया आपने। यहाँ रहने से बहुत सारे दिलचस्प लोगों से मिलने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। और एक बार ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग गेस्ट आए थे एक और उनका एक थोड़ा विवादात्मक भाव था, उनका थोड़ा कन्फ्रंटेशनल मूड था। जैसे मेरा लेक्चर ख़त्म हुआ, वो आए हमारे सामने और बोले कि आपका जो पूरा सारांश है मुझे 2 मिनट में बताओ, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ। तो मैं सडनली अचंभित हो गया, 2 मिनट में क्या बताऊँगा मैं अभी, राइट? मिनिमम लेक्चर वार्म अप के लिए 20 मिनट लगता है। तो फिर श्री प्रभुपाद, आपके जो प्रिय शिष्य श्रीमान परम पूज्य तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने आपके पूरे टीचिंग्स का पूरा एक सारांश दिया था जिसमें बताते हैं कि आध्यात्मिक संस्कृति में बहुत सारे स्पिरिचुअल लिटरेचर में बहुत सारे महापुरुषों ने अपना योगदान दिया है, परंतु श्री प्रभुपाद जी आपका एक 2 मुख्य वाक्य जो है, जो हम थोड़ा एक आध्यात्मिक टर्मिनोलॉजी में बोल सकते हैं, ये प्रभुपाद जी के 2 महावाक्य हैं जो उन्होंने दिया, जो एक यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है, आपका एक यूनिक योगदान है आध्यात्मिक संस्कृति में। पहला शब्द है कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान जो है निराकार नहीं, पूर्ण पुरुषोत्तम व्यक्ति हैं। और दूसरा आपका जो बड़ा योगदान है, जो भक्ति का उल्लेख जो दिया आपने, हाउ यू डिफाइंड भक्ति, ये केवल डिवोशन, जब भी हम शब्द देखते हैं केवल भक्ति ट्रांसलेट नहीं करते प्रभुपाद, लेकिन डिवोशनल सर्विस यानी भक्तिमय सेवा। तो ये 2 शब्द जो है ये एक तरीके से आपके महावाक्य हैं। आपका पूरा अगर गौड़ी वैष्णव सिद्धांत का अगर सारांश अगर हमें 2 शब्दों में अगर जवाब देना है तो ये है 2 वर्ड्स, कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड एंड डिवोशनल सर्विस। तो मैंने वापस, जैसे टेनिस में रिटर्न स्मैश होता है, तो मैंने वापस उनको केवल ये 2 शब्द बोल के मैं उनका चेहरा देखा, तो बुद्धिमान व्यक्ति था, समझ में आ गया उनको, राइट? तो श्री प्रभुपाद मैं बहुत धन्यवाद, मैं अपना आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि किस तरह आपने ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिलोसॉफिकल ट्रूथ्स को आपने बहुत सरल और स्पष्ट रूप से क्लैरिटी के साथ आपने आपके इस पुस्तकों से के माध्यम से आपने हम सबके लिए दिया। और मेरा यही विनती है कि मेरा यही हम्बल अपील है कि मैं हमेशा आपके पुस्तकों को मेरा जीवन का आधार बना के रखूं। जय श्री प्रभुपाद की जय।
जय श्री प्रभुपाद की जय। तो केवल 2-3 किस्से बताऊंगा मैं श्री प्रभुपाद जी के। तो एक बार श्री प्रभुपाद जी जब वृंदावन में थे अंतिम दिनों में प्रभुपाद जी के, तो प्रभुपाद जी के एक गॉड ब्रदर मिलने आए थे प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी ने उनसे कहा कि आपको पता है ये गौड़िया मठ पे इतनी समस्या क्यों हुई? तो बोले कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। तो प्रभुपाद बोले हाँ कि आपने रबर स्टैम्प मार के किसी को लीडर बना दिया। सो ही सेज आचार्य इज नॉट रबर स्टैम्प, आचार्य इज बॉर्न। और हमें पता चलता है कि हाँ प्रभुपाद इतने अद्वितीय हैं कि आध्यात्मिक जगत से पता चलता है कि वो आध्यात्मिक जगत से हमारा उद्धार करने के लिए आए हैं। तो जैसे 1896 में भक्तिविनोद ठाकुर ने जब अपना पुस्तक लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य मैकगिल यूनिवर्सिटी को भेजा था, और उस वही साल प्रभुपाद जी स्वयं उल्लेख करते हैं कि उसी साल उनका जन्म होना ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है करके कह रहे हैं। और भक्ति विनोद ठाकुर ने ये भविष्यवाणी भी की थी कि एक ऐसे वैष्णव जाकर पूरे जग भर में प्रचार करेंगे। तो प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त हैं, आचार्य हैं। तो एक रिपोर्टर ने प्रभुपाद जी से पूछा, प्रभुपाद ही सेड, स्वामी जी आर यू प्योर डिवोटी? प्रभुपाद सेड यस। देन फिर उन्होंने कहा कि देन ही सेड, द रिपोर्टर आस्ट, हैव यू सीन गॉड? ही वॉज लाइक अ काइंड ऑफ इन चैलेंजिंग मूड। प्रभुपाद सेड यस, वेरी पीसफुली, कूलली। सो देन ही सेड, कैन यू शो मी गॉड? प्रभुपाद सेड यस। Then he waited and said, then show me. Then Prabhupada just waved towards his disciples and told the journalist that first you have to become like them. Like that. So Prabhupada ji ne hame ye bataya ki kaise bhakti ka marg hai, ye kaise keval ek hi marg hai bhagwan ko santusht karne ka. Prabhupada पूरे अनकॉम्प्रोमाइजिंग जिसको बोलते हैं। एक माता थी, एक लड़की थी ऑडियंस में, उन्होंने प्रभुपाद जी क्लास दे रहे थे, हाँ अचानक से उठ के प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछा, बट प्रभुपाद स्वामी जी आर देयर मेनी वेज टू गॉड? लाइक यू नो, बहुत सारे मार्ग से आप भगवान को संतुष्ट कर नहीं सकते क्या? हाँ प्रभुपाद बोल रहे थे केवल भक्ति से संतुष्ट कर सकते हैं। तो वो बोल रहे कि आर देयर मेनी वेज टू प्लीज गॉड? प्रभुपाद सेड नो, देयर इज ओनली वन वे। जस्ट लाइक इफ समबडी गिव्स यू प्रसाद, यू कैन नॉट पुट इट हियर एंड यू कैन नॉट पुट इट हियर, यू जस्ट हैव टू गो लाइक दिस। सो दैट्स व्हाई ओनली भक्ति कैन प्लीज कृष्ण। सो प्रभुपाद वॉज अनकॉम्प्रोमाइजिंग प्योर आचार्य, केम जस्ट फॉर डिलीवरिंग fallen souls of this world. Srila Prabhupada ki. To main nivedan karta hu ki Shriman Venudhari Prabhu unka adaranjali vyakta kare. Hare Krishna. Venudhari Prabhu ke pashchat Shriman Rupa Raghunath Prabhu tayar hai.
Srila Prabhupada ki jai. मैं सोच रहा था कहाँ से चालू करो, तो क्या बोलो ऐसा भी सोच रहा था प्रभुपाद के आज के जन्मदिन। तो मेरे बगल में बैठे थे प्रभु जी, बोल रहे थे कि लास्ट टाइम जो बोला था वही बोलो। तो मैं भूल गया क्योंकि जो सपना देखता है वो भूल जाता है जल्दी। तो गोवर्धन इको विलेज में जब भी मैं आया तो काफ़ी मैं सपना देखता था। तो प्रभुपाद, क्योंकि जो सपना जो है किसी को, हर एक व्यक्ति को होता है, आणि त्या स्वप्नाचं फलित होईल का नाही ते आपल्याला माहीत नसतं। पण या ठिकाणी मी परवा एक इन्सिडेंट बघितला की आपल्या महाराष्ट्रामध्ये पूरस्थिती आली, आणि पूरस्थिती आल्यामुळं मलाही बसून बसून वाटलं की काहीतरी करावं, कारण बरंच त्या ठिकाणी लोकांचं नुकसान होतं आणि काही मुमेंटला आपण काही करू शकतो का त्यांच्यासाठी। आणि असंच विचार करत करत म्हटलं की आपण प्रसाद डिस्ट्रीब्युशन करू शकतो, परत लक्षात आलं की अरे आपण त्यांना मेडिकल पण देऊ शकतो, पण हातात काय नाही ना, हातात काय असेल तर आपण करू शकतो, नाहीतर मग स्वप्नच बघू शकतो ना।
पण माधवानंदप्रभूंना सांगितलं की प्रभूजी असं असं मी विचार करतोय की आपण काहीतरी मदत करू शकेल. तर प्रभूजी म्हणले हां हां, पण म्हटलं काय करू शकतो. मी म्हटले तुला जा तू पुढे, काय करायचं ते नंतर बघू म्हटले, तू फक्त जा फक्त घेऊन. मग मी इकडं आलो आणि म्हटलं की ते म्हटले की बघ व्यान एक तुला देतोय. म्हटलं प्रसाद कसा बनवणार. आणि गौरांगपूरना मी विचारलं की प्रभूजी मला काय ते जाऊन तिकडे करायचं आहे. तर म्हटलं की काय करायचं आहे. म्हटलं की प्रसाद डिस्ट्रीब्युशन करायचं असं विचार करतोय आणि महाराष्ट्रामध्ये अशा अशा ठिकाणी सांगली वाळवा कोल्हापूर या ठिकाणी असं पूर आलेलं आहे. म्हटलं काय पाहिजे तुला. मी पण थोडं ब्लँक झालो. म्हटलं काय पाहिजे आता याच्यासाठी. म्हटलं किती लागतील. मी म्हटलं एक आकडा बोललो. हां मग ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे जा. आणि मी अजित मुकुंदपूर सांगितलं की अशी अशी मला गाडी भरून पाहिजे आणि मी चाललो आहे. आणि मी त्याने म्हटलं ठीक आहे मी पॅकिंग करतो. आणि ते सगळं पॅकिंग घेऊन लगे 2 दिवस अगोदर विचार करत होतो की कशा पद्धतीने हे मी सगळं सिस्टीम करणार. आणि मग वेगवेगळ्या लोकांना मी फोन लागला तर प्रत्येक व्यक्ती यस 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 होय होय मी मदत करतो असं करत त्या ठिकाणी जवळजवळ 10,000 लोकांना आपण प्रसादाचं वितरण केलं. आणि मी जे स्वप्न बघत होतो ते प्रभुपादाने साकार केलं. तुम्ही या ठिकाणी यायचं आणि प्रभुपादांना प्रार्थना करायची आणि म्हणायची की प्रभुपाद मला काहीतरी करायचं आहे. नेहमीच मी विचार करत असतो कारण का मी क्रिएटिव्ह आहे, मेंटेनर नाही आहे. आणि क्रिएटिंग कोणीही करू शकतं पण मेंटेनर करू शकत नाही. माझ्या आयडिया बऱ्याच काय असतात पण कधी फलित होत नाही. असतं स्वप्न बघायचं. स्वप्न बघायला पैसे कुठे द्यायला लागतात. तर प्रभुपाद मला अशा स्वप्नामध्ये ठेवा आणि मला जर काही असं काही करता आलं तर तुमच्यासाठी तर तुम्ही माझ्याकडून करून घ्या. हीच मी आजच्या तुमच्या जन्मदिनी मी प्रार्थना करतो आणि मला तुमच्या सेवेमध्ये ठेवा. आणि या ठिकाणी जे भक्त आहेत त्या भक्तांच्या बरोबर हे मला राहण्याची संधी दिली आणि द्या त्याबद्दल अतिशय मी कृतज्ञ राहील. हरे कृष्ण
हरे कृष्ण. धन्यवाद वेणुधारी प्रभू. तो अभी मैं गिरिराज प्रभु को निवेदन करता हूँ कि वो कृपया आदरांजलि अर्पण करें. गिरिराज प्रभु के पश्चात श्रीमान विश्वरूप प्रभु तैयार रहें.
हरे कृष्ण शिल प्रभुपाद. आपके बारे में अभी सुना घड़ी की कथा जो बहुत ही जग विख्यात है. तो उस कथा को आगे बढ़ाते हुए किस प्रकार से अटैचमेंट और डिटैचमेंट लगाओ उस बारे में हिज ग्रेस शुतकिति प्रभु आपके बारे में बताते हैं कि जिस व्यक्ति को लगाव होता है वो दिखावा दिखाता है कि उसका लगाव नहीं है. लेकिन जो व्यक्ति डिटैच्ड होता है भौतिक जगत से उसके व्यक्ति के अंदर 2 लक्षण होते हैं. एक तो वो व्यक्ति बहुत ही कंसिडरेट होती है और दूसरा वो व्यक्ति हमेशा हर व्यक्ति के साथ प्रेम के साथ पेश आती है. तो इतिहास बताता है श्री प्रभुपाद कितने सारे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो इस भौतिक जगत से लगाव नहीं है इसका दिखावा करते हैं. लेकिन श्री प्रभुपाद आप इस भौतिक जगत से किसी भी प्रकार का लगाव नहीं है उसका प्रमाण यह था कि आपने आपके जीवन में हमेशा हर परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ आप कंसिडरेट रहे हैं और आप लविंग रहे हैं. शुरुआत के समय में एक ही फ्रिज में जहां आपका खाना रखा जाता था वहीं पर एक अवैष्णव चीज़ें रहती थी. शुरू में व्यक्ति आते थे जिनको पता भी नहीं था कि ये कृष्ण परंपरा क्या है, लेकिन उनके साथ हमेशा आप कंसिडरेट रहें। एक दिन हिज ग्रेस श्रुत कीर्ति प्रभु आपके लिए जूस बना रहे थे, आपकी तबीयत अच्छी नहीं थी, और मिक्सर में वो जूस बना रहे थे, तो जैसे मिक्सर बहुत ही आवाज़ करता है और शिला प्रभुपाद तब ट्रांसलेशन कर रहे थे और मिक्सर की आवाज़ से वो थोड़े डिस्टर्ब हुए और उन्होंने बुलाया श्रुत कीर्ति प्रभु को और कहा कि काय की आवाज़ है। सो श्रुत कीर्ति प्रभु ने कहा, शिला प्रभुपाद, मैं आपके लिए जूस बना रहा हूँ, लेकिन इतनी आवाज़ में मैं कैसे मैं ट्रांसलेशन कर पाऊँगा, कितनी सारी आवाज़। तो श्रुत कीर्ति प्रभु ने तुरंत जूस बनाना बंद कर दिया और फिर वो हाथ से जूस बनाने लगे। थोड़े समय के बाद फिर से बेल बजा, श्रुत कीर्ति प्रभु आए और कहें कि आप मिक्सचर वापर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शिला प्रभु ने दो चीज़ सोचा, कंसिडरेट, लविंग, क्योंकि वे जानते थे कि मिक्सचर के बगैर अगर जूस बनाने जाए तो उसमें उसके उनके शिष्य को काफ़ी मेहनत और काफ़ी समय लगने वाला है। और दूसरी चीज कि अपने स्वास्थ्य के लिए शिला प्रभुपाद हमेशा सावधान रहते थे और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ये जूस समय पर मिलना जरूरी था। हम जानते हैं कि कैसे शिला प्रभुपाद अपने शरीर का कितनी बारीकी से ख्याल रखते थे। हमें भी हमारे जीवन में ये सीखना चाहिए, शरीर के ख्याल रखने के लिए नियमबद्धता, रोज सवेरे चलना, मालिश करना, समय पर प्रसाद लेना, जो जरूरी चीज़ें वही चीज़ें लेना। इस प्रकार से अगर हम हमारे जीवन में अगर ख्याल रखते हैं तो हम भी हमारी सेवा जो है लंबे समय तक कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद, आप आपके हर शिष्य और हर ग्रैंड शिष्य के साथ आप जुड़े हुए हैं। जिस व्यक्ति ने इस हरे कृष्ण आंदोलन का आश्रय लिया है उस व्यक्ति के साथ आप पूरी तरह से हृदयपूर्वक आप जुड़े हैं। बचपन की आपकी एक कथा है जिसमें आप बताते हैं कि जब उन्हें कोई भी चीज़ चाहिए होती थी तो वो लेकर ही रहते थे। एक बार मेले में गए थे और एक बंदूक खरीदी, हाँ, बहुत जिद कर बंदूक खरीदी और फिर वापस जिद की, यहाँ तक जिद की कि वो ज़मीन पर वो लेट कर रोने लगे। माता पिता ने पूछा क्या हो गया, नहीं मेरे दूसरे हाथ के लिए दूसरी बंदूक चाहिए थी, और फिर पिता ने दूसरी की बंदूक भी दी। तब शिला प्रभुपाद बता रहे थे कि मेरे सर पर ये जो घाव जो है, हाँ, ये उस वक्त जिद करते समय ज़मीन पर लेट कर मैं जो रो रहा था उसके वजह से ये घाव हुआ है। एक दिन जब मेरे पिताजी का ऑपरेशन हो रहा था, ब्रेन का सर्जरी, तब ऑपरेशन थिएटर में शिला प्रभुपाद आपका अति आर्जवतापूर्ण कीर्तन, मैंने पहली बार उस आर्जवता का वो इंटेंस सिचुएशन में अनुभव किया, कैसे हर जीव के लिए आपके हृदय में ये आकांक्षा है कि यह जीव वापस भगवान के धाम आए। और जैसे शिला प्रभुपाद आपने जो बंदूक लेना ठान ली और आप एक नहीं लेकर ही रहे दोनों, उसी प्रकार से ये सच है कि आपके लिए हर जीव के लिए हृदय में ये इच्छा है, ये आकांक्षा है कि हर जीव वापस भगवान के धाम आए। खाली तकलीफ यही है कि हम उस प्रोसेस में कई बार, खास करके मैं आपको, मेरी इनसिंसियरिटी की वजह से कई बार आपको इजा पहुंचा देता हूं, ठेस पहुंचाता हूं। शिला प्रभुपाद, इस आज के बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पर हमारा पूरा साल जो है वो इस प्रयत्न में, इस कोशिश में जाना चाहिए कि किस प्रकार से आप और आपके शिष्य, उनका नाम, उनके लिए जो भी हो सके हम नम्रतापूर्वक सेवा कर सकें, ताकि अगले साल फिर से हम हृदयपूर्वक हम ऑफरिंग के लिए आपके चरणों में हम अपने आप को समर्पित कर सकें। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद,
धन्यवाद श्रीमान गिरिराज प्रभु, श्रीमान विश्वरूप प्रभु के पश्चात श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु तैयार रह सकते हैं।
श्री प्रभुपाद की, श्री कृष्ण भगवान की, नंदोत्सव की, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद जैसा संत इस आधुनिक युग में ना कभी होगा ना कभी हुआ, क्योंकि उनके व्यक्तित्व में ऐसे अनंत पहलू हैं जो आजकल के युग में किसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ऐसी करुणा, ऐसा क्या कहते हैं मराठी में चिकाटी, जिससे वो लगे रहते थे अपने मिशन में, और अनंत करुणा ये आजकल देखने को नहीं मिलती है। करुणा भी बहुत कन्वीनियंट और कंफर्टेबल हो जाती है। तो प्रभुपाद जी के अंदर जो करुणा थी वो उनके कंफर्ट जोन के बाहर थी। वो अपने आप को कष्ट देकर भी लोगों को करुणा का दान करते थे, प्रदान करते थे। तो भक्ति वेदांता हॉस्पिटल के कई ब्रांचेस हैं, आपको बताने में खुशी हो रही है कि भक्ति वेदांता इस नाम के अभी 13 हॉस्पिटल्स हैं। अभी अभी लास्ट महीने में 13वां हो गया है। कितनी आनंद की बात है कि प्रभुपाद जी ने अपने नाम पे कोई संस्था नहीं बनाया। हाँ, आपके देखिए भारत में जितने भी संस्थाएं हैं वो सब उस स्वामी और उस महाराज के नाम पे बनाई गई है ना। कृष्ण के, राधा रानी के, या शंकर जी के नाम पे कोई संस्था नहीं बनाई, वो उन महाराज के नाम पे बनाई। प्रभुपाद जी ने जीवन भर में कभी भी अपने नाम पे कोई संस्था नहीं बनाई। लोग यहाँ तक भी, मतलब कृष्ण को सब लोग जान गए लेकिन वो बनाया ना किसने, उनको जानते नहीं थे। तो प्रभुपाद जी के अगली पीढ़ी के लोगों ने भक्ति वेदांत नाम देना शुरू किया ताकि लोगों को पता चले कि ये व्यक्ति है कौन, इसकी इतनी विस्तार पूर्वक प्रभाव विश्व पे हुआ है। तो किसी ने बताया कि हर शहर में एक मंदिर है, ये चमत्कार किसने किया ये बताने के लिए भी ज़रूरी है। तो एक है उसमें से भक्ति वेदांत हॉस्पिस, हाँ, जो वृंदावन में है। तो वहाँ पर वो जगह हमें मिलने के पहले एक ट्रस्टी थे प्रभुपाद डिसाइपल अभिराम प्रभु, जो बड़े बहुत ही सुंदर भक्त हैं प्रभुपाद जी के। तो वो हॉस्पिस के इसमें इन्वॉल्व थे पहले, बाद में प्रभुपाद जी का मेमोरियल बनना था वहाँ पहले, फिर बाद में हॉस्पिस बना। तो वो ट्रस्टी थे इसलिए हमारा आदान प्रदान उनका होता रहा। तो एक ऐसे ही उत्कट प्रसंग में उन्होंने हमको एक घटना वर्णन की। वो ये है कि प्रभुपाद जी अंतिम स्थिति में ना बहुत ही दुबले हो गए थे। बहुत दुबले, मतलब कितना वजन होगा पता नहीं, बहुत ही हल्के और बहुत दुबले, वैसे छोटे से थे वैसे शरीर से, कुछ खाते पीते भी नहीं थे। तो तभी अभिराम प्रभु उनकी सेवा में थे, और उस स्थिति में सेवा का मतलब क्या है, उनका सब कुछ करना है। वो बिस्तर में ही थे, उनका जो मल पदार्थ भी है वो निकालना है, उनका मूत्र भी निकालना है, उनके कपड़े भी बदले करने हैं, उनको स्पंज भी करना है। मतलब जैसे एक पेशेंट को बेड में करते हैं ना, बेड रिडन लास्ट स्टेज में, वैसे पूरी सेवा वो करते थे। तो उन्होंने मुझे ना ऐसा एक्शन से दिखाया कि मैं ऐसे प्रभुपाद जी को मेरे गोद में रखता था, ऐसे सर यहाँ पर है और ऐसे पैर हैं, और हम लोग कैसे अपने बच्चों को कैसे साफ करते हैं ना, ऐसे ऐसे वो साफ कर रहे थे, मल साफ कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी उनकी ओर देख रहे हैं, वो दिल से मल साफ कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी बीच में उनके बोलते हैं, बहुत कष्ट वाला काम है ना ये। तो अभिराम बाबू उनको उनकी आंखों में देखते हैं, फिर प्रभुपाद कहते हैं, बहुत कष्ट होता होगा ना ये सेवा करने में। तो अभिराम प्रभु जी ने उनको कहा, प्रभुपाद जी अगर मैं ये सेवा नहीं करूँगा ना तो मैं वहाँ जाकर माया की सेवा करूँगा, हाँ, लड़कियों के पीछे भागूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा, नशा करूंगा, वो जो माया की सेवा है वो भयंकर है, वो जो नरक में पहुंचा देगी, ये सेवा जो है ना ये भगवान के पास पहुंचा देगी। तो प्रभुपाद जी की कितनी, प्रभुपाद जी ने फिर इसको ऐसे नॉड किया, यस यू आर राइट। तो ये विशेष बात है कि प्रभुपाद जी ने, आज हम लोग यहाँ खड़े हैं, हाँ, धोती कुर्ता पहन के, तिलक पहन के, और मंदिर में आए, जन्माष्टमी नंदोत्सव का उत्सव मना रहे हैं। हमको पता नहीं है कि हम लोग क्या करने वाले होते अगर प्रभुपाद जी के छत्र छाया में नहीं आए होते। मुझे तो पता है, मैं भी आपको यहाँ वर्णन नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पता है कि मैं कितनी भयंकर मोड़ पे जीवन में था, जहाँ से केवल फिसलन पहाड़ी थी नरक की ओर, हाँ, वहाँ से मुझे प्रभुपाद जी के संस्था से परिचय होकर बचाया गया। और आज भी मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या क्या प्रवृत्तियाँ हैं, किस प्रकार की,
अगर वो प्रभुपाद जी के संस्था का सहारा नहीं होता तो कुछ और मैं करता होता, और निश्चित रूप से करता होता। तो ऐसे प्रभुपाद जी ने हम सबको ऐसे भयंकर स्थिति से बचाया है, और ऐसा केवल निगेटिव स्थिति से बचाकर शून्य स्थिति में ला के छोड़ा नहीं है, ऐसा एक सकारात्मक शक्ति और अनुभव हमको दिया है जो हमको इस स्थिति में बनाए रखने के लिए भी सहायता कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि न्यूट्रल में ला के रखा तो फिर कुछ मोह हो गया तो फिर फिसल गए, ऐसे नहीं, ऐसे स्थिति में ला के रखा है जो हमें हमेशा उस आनंद वाली स्थिति में बनाए रखे। और आप सबको बताना ये जरूरी है कि प्रभुपाद जी 1977 में अपने शरीर को छोड़कर चले गए ये मत समझना, जहाँ जहाँ उनके प्रति श्रद्धा है वहाँ वहाँ वो आज भी उपस्थित है, निश्चित रूप से आप समझ लेना। आइए भक्ति वेदांत में आप हमारे स्टाफ लोगों को मिलिए कि कैसे कैसे उनको प्रभुपाद जी का वहाँ होने का अनुभव कई बार हुआ है। पता नहीं लास्ट टाइम ने बताया कि नहीं, फिर बार बताने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारी गिरिराज प्रभु की काउंसिल थी अंजनी प्रिया माता जी, हाँ, हिज होलीनेस राधानाथ महाराज की शिष्या थी वो, पहले हमारे स्पिरिचुअल केयर में काम करती थी, फिर रेलवे में उनको अपने पति का कुछ जॉब मिला तो रेलवे में गई, लेकिन उनको कैंसर हो गया और कैंसर होने के बाद फिर क्या करेंगे, फिर वो उसी हॉस्पिटल में गवर्नमेंट के भर्ती हो गई और लास्ट स्टेज में आ गई। फिर गिरिराज प्रभु ने कहा कि बस हो गया, अभी भक्ति विधान में आ जाओ, अभी क्या और करना है बाहर। तो भक्ति विधान में बड़ी मुश्किल से लाया गया उनको और एडमिट हो गई। फिर भी लास्ट स्टेज में ना बहुत कैंसर में बहुत दर्द होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत दर्द होता है और दर्द निवारण करना एक सबसे बड़ा चैलेंज रहता है उस समय। तो दवाइयाँ चल रही हैं दर्द निवारण की, अभी ये दर्द दिया मैच हो गया, अभी कल उसे भी दर्द हो रहा है तो और दवा इंक्रीज कर दिया, ऐसे कर चल रहा था। अचानक एक दिन बोलती है आज से मुझे सब दवाई का दर्द की दवा बंद करो। बोला अभी दर्द निवारण पूरा नहीं हुआ है। नहीं नहीं बंद कर दो आप। बोला क्या हुआ? तो कहते हैं कल रात को मुझे स्वप्न आया, वो स्वप्न में मैं व्हीलचेयर में थी और प्रभुपाद जी के विशाल सत्संग में थी, और प्रभुपाद जी सत्संग दे रहे हैं और सत्संग समाप्त होता है और प्रभुपाद जी मुझे बुलाते हैं, अंजनी प्रिया आ जाओ। तो कोई भक्त मुझे व्हीलचेयर में ले जाते हैं और प्रभुपाद जी कहते हैं अंजनी प्रिया निश्चिंत रहो, तुम्हारा सब कुछ कल्याण मैं करूँगा। वो एक वाक्य से उनको इतनी शक्ति आई, उन्होंने कहा अभी कोई दवा की जरूरत नहीं, और कोई पीड़ा रोना धोना भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद में दर्द था उनको, लेकिन ऐसी शक्ति प्राप्त हुई उनको कि बड़े इत्मीनान से और शांति से वो उन्होंने शरीर छोड़ा अपना भगवान के भक्तों के बीच कीर्तन सुनने के बीच। ऐसे एक नहीं भक्ति विधान में कई उदाहरण है, और हमें ये दृढ़ विश्वास है कि भक्ति वेदांत अस्पताल के कोने कोने में प्रभुपाद जी का निवास है और उनकी ही कृपा दृश्य सब जगह पर है, और भक्ति वेदांत में जो आता है वो उनकी इच्छा से आता है, जो जाता है वो भी उनकी इच्छा से जाता है, पूरा नियंत्रण है उनका। हम लोग केवल वहाँ पर कठपुतलियाँ हैं और प्रभुपाद जी का पूरा नियंत्रण है, प्रभुपाद जी वहाँ के बॉस हैं, और वहाँ पर केवल वही आ सकता है जो जिसके सुकृत अच्छे हैं, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम गूंज रहा है, प्रसाद मिल रहा है, भक्तों का संग होगा, भक्तों के हाथ से इलाज होगा, ऐसी जगह पर पुण्य पूर्व पुण्य के अनुसार ही आ सकता है, कोई बिना पूर्व पुण्य के नहीं आ सकता है। इसलिए जो भी आते हैं वहाँ पर हमें दृढ़ विश्वास है कि वो सब प्रभुपाद जी के मेहमान हैं, जिनको प्रभुपाद जी को कृपा देनी है वही वहाँ पर आते, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो या नास्तिक हो, जो प्रसाद खाने के और भगवान के नाम ले सुनने के योग्य है वही वहाँ पर आते हैं, और उनको प्रभुपाद जी अप्रत्यक्ष रीति से क्यों न हो, प्रत्यक्ष रीति से या अप्रत्यक्ष रीति से उन पर कृपा करते रहते हैं। तो हम सब लोगों को इस दिन पर समझना चाहिए कि हम किसका गौरव कर रहे हैं। मैं कुछ ही दिन पहले मेरी पत्नी को बता रहा था कि हमारे जीवन में प्रभुपाद जी है, ये कितने बड़े भाग्य की बात है, कितना बड़ा हमारा भाग्य है कि ऐसे महान विभूति से हमारा संपर्क है। और वो यही नहीं है कि वो हमको, हमने इनको दर्शन ही नहीं किया, लेकिन हमारे जीवन के हर एक पल में उनका सहभाग है, उनका अस्तित्व है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे जीवन के हर पल में, आज भी जो शरीर से भी नहीं है तो भी। इसलिए हम सब लोगों को ना बार बार कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग भी समझो बहुत ही अब्जोपति व्यक्ति के पुत्र हैं, समझो इतनी सारी सुविधाओं का अनुभव करते हैं तो हमको लगता है क्या है पापा, अभी हमको मर्सिडीज देके नहीं दिया, अभी दो चार गाड़ी देके दिया, मर्सिडीज दे दिया, ऐसा लगता हो सकता है हमको। हाँ, क्योंकि क्या है, जो है उसकी हमको ज़्यादा वैल्यू रहती नहीं है, जो नहीं है उस पर ध्यान लगा रहता है। हमारे जीवन में प्रभुपाद जी है, हो सकता है हम उसको भूल सकते हैं या उसको इतना मूल्य दे सकते नहीं, लेकिन हमको इस दिन को उपयोग करके आज दिन भर चिंतन करके साल भर के लिए क्यों ना एक बार याद करना है कि प्रभुपाद जी कौन है, क्या है और हमारे जीवन में उनका क्या स्थान है और क्या परिवर्तन उन्होंने हमारे जीवन में किया है और किस भयंकर घटनाओं से या कार्यकलापों से उन्होंने हमको बचाया है, इसके चिंतन करने का यह दिन है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी आपका अनंत धन्यवाद है और आपके छत्र छाया में होते हुए हमें एक विश्वास है, जैसे हमारे प्रिय हिज होलीनेस श्रीधर महाराज ने बताया था, हाँ, इस पर हमको पूरा यकीन है, इस बात पर कि श्रील प्रभुपाद जी ने उनके इस्कॉन में जो जुड़े हुए हैं इनको गौलोक वृंदावन के लिए पीछे से एक अलग गेट खोला है। हाँ, निश्चित रूप से आप विश्वास रखना इस बात पर। हमें क्या करना है, हमें फिर लगे रहना है, बस 16 माला करना है ध्यानपूर्वक, भक्तों का अपराध नहीं करना है, प्रसाद खाना है, 4 नियम का पालन करना है, जो सेवा दिया उसको करना है। इतना काम करते रहेंगे लगातार ना, आपको आगे की चिंता करने की जरूरत नहीं, पीछे का गेट एक प्राइवेट खोल के रखा है उन्होंने, सबको एंट्री कर रहे, ऐसे श्रीधर महाराज ने कहा था, इसमें हमको पूरा विश्वास है क्योंकि उन्होंने कुछ दाखिले भी दिए थे ऐसे, तो वो दाखिले की जरूरत नहीं आपको, लेकिन निश्चित रूप से रहिए, आप लगे रहिए, प्लीज कंटिन्यू ऑन विदाउट एनी डाउट विद फुल फेथ एंड वन डे वी ऑल विल बी इन गोलोक वृंदावन। हरि बोल। चलो प्रभुपाद की।
बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विश्वरूप प्रभु। श्रीमान रूप रघुनाथ प्रभु के बाद मैं आमंत्रित करता श्रीमान सनत कुमार प्रभु को।
हरे कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। 1939 साली देवान सरस्वती मठमध्ये ज्यावेळेस प्रभुपादांना त्यांचे गुरुभाऊ भक्ती सारंग स्वामी महाराजांनी श्रीधर महाराजांनी पदवी दिली भक्ती वेदांत, तर श्रील प्रभुपादांचा जो भक्तीचा प्रभाव आहे त्याचं शास्त्रांचं ज्ञान आणि दृढ निश्चय हे बघून ही खास भक्ती वेदांत पदवी बहाल करण्यात आली। आणि आपण बघतो श्रील व्यासदेव त्यांनी सर्व वैदिक ग्रंथांचं सर्व लिहून झाल्यानंतर श्रीमद भागवतम दिलं, जे की पूर्ण वैदिक ग्रंथांचं सार आहे, भक्ती वेदांत। श्रील व्यासदेवांना हे दाखवायचं होतं की सर्व वेदांचा सार हे भक्ती आहे आणि प्रभुपादसुद्धा भक्ती वेदांत आहेत। तर इथे वैदिक शास्त्रामध्ये आपण बघतो की सवय पुंसा परोधर्म यतो भक्ती रदोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता या आत्मा सुप्रसिद्धती। कशा प्रकारे ही अहेतुकी कुठल्याही प्रकारचा अडथळा कुठल्याही प्रकारचा स्वार्थ हेतू न ठेवता जी भक्ती करायची आहे, पण हे करण्यासाठी कोणीतरी आचार्य पाहिजे, कोणीतरी सांगणारा पाहिजे। बऱ्याच वेळेस बघतो ह्या जगामध्ये की इथे तर्कोप्रतिष्ठा श्रुती अभिन की इथे इतके तर्क असतात की शास्त्र आहेत, गीता आहे किंवा अनेक वैदिक शास्त्र आहेत, परंतु ते शास्त्र समजण्यासाठी आज जर बाह्य समाजामध्ये आपण बघतो की अध्यात्माकडे लोक वळत आहेत, परंतु जसं श्रीमद्भागवतामध्ये 11 स्कंदांमध्ये वर्णन आहे की जेव्हा पावसाळ्याचे दिवस असतात पावसाळ्यामध्ये ढग आल्यामुळे काय होतं की चांदणे किंवा तारे दिसत नाही, त्यावेळेस चंद्र दिसत नाही, ढगांमुळे काय दिसतं तर काजवे चमकतात। तसं ह्या कलियुगाच्या प्रभावामुळे काय झालं की एवढं अज्ञान पसरलेलं आहे की जरी गीता समोर आहे जरी आध्यात्मिक मार्ग समोर आहे परंतु की हितद्रुप की लोक एवढे गोंधळलेले आहे की त्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळत नाही। म्हणून योग्य आचार्य असणं हे किती आवश्यक आहे आणि आपण खूप भाग्यवान आहोत की श्रील प्रभुपाद आणि त्यांचे जे परंपरेमध्ये जे महान शिष्य आहेत हे आपल्याला लाभल्यामुळे काय झालं की धर्मस्य तत्त्व निहितम गुहायम की जे शुद्ध भक्त आहेत त्यांच्या हृदयामध्ये हे जे तत्त्व आहे भक्तीचं तत्त्व जे आहेत ते धारण करून हे महान आचार्य किंवा शुद्ध भक्त जे आहेत हे वहन करतात। म्हणून अधिकारी व्यक्तीचं मार्गदर्शन जे आहे खूप भक्तीमध्ये आवश्यक आहे आणि श्रील प्रभुपादांचं जे अनेक लीला आहेत, अनेक प्रभुपादांचे जे जीवनातले जे प्रसंग आहेत त्याच्यात आपण बघतो की कशा प्रकारे हे जे 26 क्वालिटीज जे 26 गुण आहेत एक शुद्ध भक्ताचे त्या एका याच्यामध्ये कशा प्रकारे प्रभुपाद प्रदर्शन करत कशाप्रकारे ते दाखवत आहेत. जसं की एक वैष्णवाचा गुण आहे, शुद्ध भक्ताचा गुण आहे की सत्यसार, जे की नेहमी सत्याला धरून राहतात. सत्य असून कुठल्या प्रकारचं भेसळ असलेली गोष्ट ते स्वीकारू शकत नाही. आणि त्याच्या 6 प्रकारच्या ज्या लक्षण किंवा 6 प्रकारचे जे व्याख्या आहेत सत्यसाराचे, एक तर म्हणजे की जो कृष्णाला परम सत्य म्हणून स्वीकारतो, जर दुसरं कुठल्याही प्रकारचं ते तडजोड करणार नाही. जसं श्रील प्रभुपाद एकदा प्रभुपादांना भेटण्यासाठी एक व्यक्ती आले जे की म्हणत की मी भगवान आहे. तर प्रभुपाद विचारतात की भगवान शब्दाचा अर्थ काय, भगवान म्हणजे काय. तो बोलले की गिव मी डिक्शनरी. तर प्रभुपाद म्हणाले की जर भगवान शब्दाचा अर्थ शोधण्यासाठी जर तुला डिक्शनरी लागते तू कसला भगवान आहे. अशा प्रकारे प्रभुपाद कुठल्या प्रकारचे तडजोड करत नव्हते. जसं एकदा रवींद्र स्वरूप प्रभूंनी एक वैदिक जो प्रचार करणार आहे वैदिक शास्त्राबद्दल किंवा वैदिक धर्माबद्दल प्रचार करणारे ती व्यक्ती ते घेऊन आले आणि त्यांना ते प्रभुपाद विचारतात की तुम्ही वैदिक ज्ञानाचा प्रचार करताय पाश्चात्य देशामध्ये सगळीकडे, तर हे जे हिंदू किंवा धर्म म्हणजे काय, तर ते जरा तुम्ही काय व्याख्या, धर्माची व्याख्या काय किंवा हिंदू धर्म काय. तर ते म्हणाले की हे खूप कॉम्प्लिकेटेड आहे, धर्माची व्याख्या करणं हे खूप गुंतागुंतीचं आहे, ते सहज समजावून सांगणं खूप कठीण आहे. तर तिथे बाजूला भक्तिस्वरूप दामोदर महाराज बसले होते आणि श्रील प्रभुपाद त्यांना सांगतात की जी व्यक्ती एखादी गोष्ट शिकवते लोकांना सांगते पण त्याला ते माहीत नाही त्याला काय म्हणतात. तर भक्तिस्वरूप दामोदर गोस्वामी म्हणतात फसविणारा, ही चीटर. तर प्रभुपाद म्हणाले की ती व्यक्ती म्हणते जो ज्ञानाचा प्रचार करणं ती व्यक्ती प्रचारक म्हणते की आय एम PhD, मी PhD आहे. तर श्रील प्रभुपाद सांगतात तू PhD असो कोणी असो परंतु पहिलं स्टॉप चिटिंग, नेक्स्ट कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनॅलिटी ऑफ गॉड हेड, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आहेत हे स्वीकार कर, फसवण्याची वृत्ती सोड. म्हणजे की जे कृष्ण हे परम सत्य आहे हृदयापासून स्वीकारलं आहे त्याच्यामध्ये कुठल्या प्रकारची तडजोड नाही. आणि सत्यसारेची जी आहे दुसरी व्याख्या ते आचार्य सांगतात की मी भगवंताचा अंश आहे, त्याने पूर्णपणे स्वीकार की मी भगवंताचा अंश आहे, कुठल्या प्रकारचं त्याच्यामध्ये कॉम्प्रोमाइज किंवा तडजोड नाही. तर श्रील प्रभुपाद सुरुवातीला ज्यावेळेस प्रवचन्स किंवा चर्चा व्हायची तर श्रील प्रभुपाद नेहमी सांगायचे की आय एम नॉट धिस बॉडी, मी आय एम स्पिरिट सोल, मी शरीर नाही मी आत्मा आहे. तर बऱ्याचशा जो हिप्पी समाज आजूबाजूला असायचे त्यांना वाटायचं की प्रभुपाद हे त्यांच्याबद्दल बोलत आहेत, वी आर धिस बॉडी, प्रभुपाद जे बोल त्यांच्याबद्दल बोलत आहे की ही इज नॉट धिस बॉडी, ते तेवढे साक्षात्कार आहे अशा प्रकारे. परंतु जरी त्यांना ते समजत नव्हतं तरी पण प्रभुपादाने काही कधी कॉम्प्रोमाइज केलं नाही, की प्रभुपादाने कधी ते तडजोड केली नाही की ठीक आहे आता यांचा स्तर तो नाही तर मग ठीक आहे यांना थोडा वेळ आपण सांगू तुम्ही शरीर आहे आणि नंतर मग ते सांगूया की तुम्ही आत्मा झाला आहे. जसं इथे आपण बघतो की महाराष्ट्रामध्ये बऱ्याच वेळेस की मीच विठ्ठल झालो अशा प्रकारचं बऱ्याच वेळेस बोललं जातं आणि मग ते कधी कधी समजावताना काय सांगतात की ॲक्च्युली तुम्ही भगवंताची सेवा करायची आणि सेवा करत करत मग जेव्हा पूर्णपणे भौतिक जगापासून तुम्ही अनासक्त व्हाल आणि तो साक्षात्कार होईल की मीच आता विठ्ठल झालो आहे. पण ॲक्च्युली मीच विठ्ठल झालो तो त्याचा अर्थ नाही आहे. संत शिरवण तुकाराम सांगतो मीच विठ्ठल झालो म्हणजे आता मी आणि विठ्ठल याच्यामध्ये काही दुजाभाव राहिला नाही, तर त्यांनी कधी कॉम्प्रोमाइज केलेलं नाही. तर श्रील प्रभुपाद नेहमीच ते जे सत्य आहे तेच सांगत असत. आणि तिसरा व्याख्या सांगतात की भौतिक जगत दुःखमय आहे आणि आध्यात्मिक जगत शाश्वत आहे. तर भौतिक जगत हे दुःखमय. एकदा श्रील प्रभुपाद मॉर्निंग वॉकला जात असताना त्यांनी बघितलं की एक कचरा कुंडी तिथे पडलेली आहे आणि सगळे तिथे कचरा टाकत आहेत. तर ते बाजूला बरोबर हृदयानंद गोस्वामी महाराज चाललेले आहेत आणि श्रील प्रभुपाद त्यांना विचारतात ह्या त्या कचरा कुंडीवर काय लिहिला आहे. ते सांगतात की कुंडीवर लिहिलं आहे येथे कचरा टाका. तर श्रील प्रभुपाद सांगतात की भौतिक जगत सगळं येथे याच्यामध्ये टाकलं पाहिजे की हे जे भौतिक जगत आहे हे कचराच आहे सगळीकडे सगळा कचराच आहे तर ह्या कचरा कुंडीमध्ये टाकलं पाहिजे सगळं. आणि प्रभुपाद सांगतात की याच्यामध्ये तो उंदीर जो आहे तो काय करतो आहे इंद्रियतृप्ती करण्याचा प्रयत्न करतो आहे पण त्या उंदरालाही लक्षात येत नाही आहे. एक दिवस काही वेळाने ते म्युन्सिपाल्टीची गाडी गेली आणि ती कचरा कुंडी उचलून ते घेऊन जातील. तसं ह्या जगामध्ये जो जीव आलेला आहे तो काय करतो इंद्रिय भोगासाठी तडफडतो आहे परंतु त्याला हे कळत नाही की अटळ मृत्यू जो आहे कधी पहिल येईल आणि सर्व काही समाप्त होईल. तर श्रील प्रभुपाद हे सदैव की कशा प्रकारे भौतिक जगत हे दुःखमय आहे आणि आध्यात्मिक जगत हे शाश्वत आहे. आणि चौथी व्याख्या देताने सांगतात की जी वस्तुस्थिती आहे तशी तो स्वीकारतो तडजोड करत नाही. लोकांना सत्य किंवा खरं सांगताने कुठल्या जसं श्रील प्रभुपाद अभय चरण ज्यांच्या हृदयामध्ये कुठल्या प्रकारचं भय नाही आहे. ज्यावेळेस श्रील प्रभुपादांनी पाश्चात्य देशामध्ये प्रचार केला सुरू केला तर पूर्णपणे त्यांची जी आर्थिक व्यवस्था आहे ही या चार गोष्टींवर अवलंबून होते. मांसाहार न करणं सगळ्यात जास्त जो पैसा मिळतो तो याच्यातून मिळतो आहे. कुठल्याही प्रकारचं व्यसन न करणं आणि सगळ्या प्रकारचं जे जास्तीत जास्त आर्थिक व्यवस्था जी आहे त्याच्यावर अवलंबून आहे पाश्चात्य देशाची. आणि कुठल्याही प्रकारचा जुगार न करणं सगळ्यात जास्त जे त्यांना टॅक्स जो मिळतो त्याच्यात नाही मिळतो अशा ह्याच्यामधून तिथे. पण श्रील प्रभुपाद ह्या चारही गोष्टी बंद करण्यासाठी सांगतात कुठली कोणी हे डेअरिंग करणार नाही कुठली कोणी हे धाडस करणार नाही की जिथे पूर्ण अर्थव्यवस्था त्याच्यावर अवलंबून आहे आणि त्याच गोष्टी बंद करण्यासाठी सांगणं. पण एक निरर एक अभय का तर भगवंतावर तो दृढ विश्वास आहे. श्रील प्रभुपादांना एक रिपोर्टर विचारतो की तुम्ही ह्या आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या गोष्टी वापरत आहात तसं आता तुम्ही विमानाने आलात तर श्रील प्रभुपाद सांगतात हे जे विमान वगैरे जे आहे ऑल दिस थिंग्स आर थर्ड क्लास सगळं बेकार आहे परंतु ज्या प्रकारचं मी कार्य करतो आहे त्याच्या तुलनेमध्ये हे थोडं एवढं नाही आहे हा खास नाही आहे तरी पण एक कृष्णाच्या सेवेसाठी मी ते वापरतो आहे म्हणून त्याला तर काहीतरी किंमत आहे. आणि दुसरं कारण प्रभुपाद सांगतात की हे जे समाज जो आहे हा विमानाच्या वेगाने नरकाच्या दिशेने चालला आहे तर त्याला पकडण्यासाठी तो नरक्या स्पीडने तो नरकाच्या दिशेने चालला त्याला त्याला पकडण्यासाठी मी बैलगाडीतून येऊ शकत नाही त्यासाठी स्पीडच्या विमानानेच जावं लागेल जेणेकरून नरकाकडे चाललेला हा जो समाज आहे त्याला भगवतधामाकडे घेऊन येता येईल. तर प्रभुपाद जे सत्यस्थिती वस्तुस्थिती आहे ते लोकांना जसंच्या तसं देत होते. आणि पाचवी जी व्याख्या सांगतात की भगवान श्रीकृष्णांचा इच्छेनुसार भगवान श्रीकृष्णांच्या इच्छेनुसार वागणे. जसे परमतमाल कृष्ण महाराज शिलप्रभुपादांना म्हणतात की शिलप्रभुपाद त्यांना म्हणतात की मी काहीच करत नाही. ॲक्च्युली तुम्ही सर्व आहात तरुण तरुणी जे आहात या पाश्चात्य देशातून आलात आणि एवढं सर्व काही भोग विलास सर्व काही सोडून तुम्ही ह्या महान कार्यामध्ये मला मदत करताय आणि जे काही मी इथे प्रभुपादांची ती नम्रता तर तुमच्यामुळे गुरु महाराजांसाठी मी कार्य करू शकतो आहे. तर त्यावेळेस परमपूज्य जयदेव महाराज तिथे बाजूला बसले आहेत आणि ते सांगतात की श्रील प्रभुपाद यू आर लाईक महाविष्णू. ते महाविष्णू जसं महाविष्णू काही करत नाही फक्त त्यांच्या विचाराने सगळं काही भगवती जगत चाललंच आध्यात्मिक भगवती जगत चाललंय. तसं श्रील प्रभुपाद तुम्ही करताय तरी पण तुमची नम्रता मी काही करत नाही पण तुमच्या फक्त यू आर हिअर एव्हरीथिंग इज हॅपनिंग सर्व काही घडतं आहे त्याच्यामुळे सर्व काही गोष्टी चाललेल्या आहेत. तर ही भगवंत जे आहेत तुम्ही एवढे महान भक्त आहात किंवा इतके भगवंताला प्रिय आहात की त्यामुळे भगवंत फक्त तुमची इच्छा बघून भगवंत सर्व काही तुमच्या इच्छा ज्या आहेत पूर्ण करत आहेत. श्रील जेव्हा पाश्चात्य देशामध्ये जस्ट सुरुवातीलाच प्रभुपादांनी एका कॉलेजमध्ये लेक्चर दिलं आहे आणि प्रभुपाद बाहेर बसलेले आहेत आणि एक प्रोफेसर त्यांना विचारत आहेत की स्वामीजी तुम्ही कुठून आलात, काय आहात, म्हणजे काय करतात. तर श्रील प्रभुपाद सांगतात की मी भारतातून आलेलो आहे आणि आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ज्या संस्थापक आहे आणि हजारो शिष्य आहेत आणि लाखोच्या संख्येने वैदिक ग्रंथांचं छपाई होऊन वितरण चाललेलं आहे. आणि ॲक्च्युली त्यावेळेस इस्कॉनची स्थापना पण झालेली नव्हती, एकही ग्रंथ छापलेला नव्हता, एकही प्रभुपाद पाश्चात्य देशामध्ये शिष्य नव्हता. पण जस्ट एक प्रभुपादांचं इच्छा होती की असं भगवंतासाठी करायचं आहे आणि भगवंतांनी ह्या सगळ्या इच्छा ज्या आहेत ते पूर्ण करतायत. आणि सावी व्याख्या सांगतायत की कशाप्रकारे अधम पापी लोकांना परमसत्य देण्याची पात्रता, की जे कुठल्याही स्तराला असेल त्याला हरिनाम शास्त्र ऐकवण्यासाठी ते प्रोत्साहित करू शकतात. बऱ्याच वेळेस आपण बघतो की आपली खूप इच्छा असते की हा भक्त झाला पाहिजे, याने जप केला पाहिजे, याने असं वागलं पाहिजे, पण बऱ्याच वेळेस गोष्टी सगळ्या उलट्या होतात आणि बऱ्याच वेळेस भक्त जो आहे तो साधक जो आहे हा फ्रस्ट्रेट होऊन जातो. कधी कधी स्वतः स्वतःसारखा वागू शकत नाही, आपल्या स्वतःलाच इच्छा असते की मी असं वागलं पाहिजे, मी असं केलं पाहिजे, पण स्वतःसारखं जी इच्छा आहे त्यानुसार वागू शकत नाही. परंतु इथे श्रील प्रभुपादांच्या जीवनामध्ये आपण बघतो की कशाप्रकारे श्रील प्रभुपाद जेव्हा अनेक प्रभुपाद शिष्य सांगतात की श्रील प्रभुपाद जेव्हा सुरुवातीला प्रवचन करायचे तर काही समजत नव्हतं. श्रील प्रभुपाद इथं इंडियन, त्याच्यातून आणि ते बंगालचे, त्यामुळे ते जे उच्चार आहेत ते की जे भारतीय व्यक्ती जेव्हा इंग्लिश बोलतात, आपल्याला आता मी चांगलं इंग्लिश बोलतो पण एखादा वेस्टर्न जेव्हा असतं तर त्यांना ते एकदम काहीच कळत नाही आणि ते जेव्हा तर आपल्यालाही कळत नाही बऱ्याच वेळेस. तर पण इथे एक तर भारतीय आणि त्याच्यातून आणि बंगालमधून असल्यामुळे तिच्याकडून जो ते सांगतात की 6 महिने आम्हाला काही कळालंच नाही. प्रभुपाद फक्त बोलतायत पण जस्ट प्रभुपादांची जी कम्पॅशन, जी कृपा होती, करुणा होती आणि त्याचबरोबर श्रील प्रभुपादांची शुद्धता आणि हरिनामावरती जी श्रद्धा होती, गुरुच्या प्रति श्रद्धा होती, त्यामुळे आम्ही एवढं आकर्षित झालो की आम्ही इस्कॉनमध्ये जॉईन झालो. म्हणजे काही विचार करा, आपण मला आठवतं मी एकदा नांदेड साहेब एका ठिकाणी गेलो होतो आणि मला सांगितलं की जस्ट अचानक बोललं की आमचं काही कम्प्युटर इन्स्टिट्यूट आहे त्याचं ओपनिंग करायचं आहे, तुम्ही जरा या बरोबर. तर मला वाटलं की आता कम्प्युटर इन्स्टिट्यूट आहे, 10-15 लोक खुर्शीवर बसलं आहे, त्यांना बोलायचं काय आणि 5 मिनिटापूर्वी सांगितलं आहे. तर मी जस्ट एक काहीतरी गीतेतलं बोलायला लागलो, थोडा काहीतरी श्लोक घेतला आणि बोलायला सुरू केलं आणि कुणाच्या तोंडावरचे मासे पण हालायला तयार नाही. म्हणजे काहीच म्हणजे प्रिचिंगमध्ये काही वर्षानंतर ऐकलं तेवढा अनुभव येतं की लोकांना कळतं की नाही, तर काही एक मासे पण त्याच्या तोंडावरचे हालायला तयार नाही. म्हटलं काय करू काय करू, आणि काही कळायला तर मार्ग नाही. नंतर 5 मिनिटांमध्ये मी विषय बदलला आणि हरिनाम सुरू केलं. तर ते पण निश्चित श्रील प्रभुपाद जरी तिथे कुणा कळत नाही पण लोक जे आहेत त्यांच्याकडे आकर्षित होत आहेत. तशा प्रकारे इथे आपण बघतो की श्रील प्रभुपाद तुम्ही इथे आहात आणि काल मी जेव्हा अनेक लोकांबरोबर बोलत होतो सांगतं की इतकं सुंदर तुम्ही ठिकाण बनवलेलं आहे, इतकं छान आहे, इथं आल्यानंतर परत घरी जायची इच्छाच होत नाही. तर इथे श्रील प्रभुपादांचं आपण म्हणतो की श्रील प्रभुपादांनी एवढं मोठं घर बांधलं आहे की सारं जग त्याच्यामध्ये राहू शकतं. तसे श्रील प्रभुपाद आणि त्यांचे शिष्य गुरु महाराज यांनी इतकं सुंदर एक घर गोवर्धन कॉलेज दिलेलं आहे की जो कोणी गोवर्धन कॉलेजमध्ये येतो, जो कोणी इथे येतो त्या परत घरी जावं असं वाटतं आणि त्याला वाटतं हेच माझं घर आहे. थँक्यू श्रील प्रभुपाद, धन्यवाद. हरे कृष्ण.
आज श्रील प्रभुपादांच्या अवतरणाच्या दिवशी श्रील प्रभुपादांची जी काही वेगवेगळी शिकवणूक असते ती समजण्यावरती आपण लक्ष केंद्रित करतो. श्रील प्रभुपादांचे जे एक प्रमुख शिष्य होते, म्हणजे ज्यांना श्रील प्रभुपादांचा बराच काळ सहवास लागला, असे तमालकृष्ण गोस्वामी आहेत. तर त्यांनी त्यांच्या आठवणीबद्दल एक पुस्तक लिहिलं होतं. तर त्या पुस्तकामध्ये त्यांनी सांगितलं होतं की अगदी सुरुवातीला त्यावेळेला हे जे हरे कृष्ण आंदोलन इस्कॉन जे होतं त्याचे फार थोडे लोक होते. इस्कॉनचे काही केंद्र असतात आणि त्या केंद्रात येणारे लोक सकाळी म्हणजे मध्य केंद्रातच राहत, सकाळी मंगलारती अटेंड करत, त्याच्यानंतर मग भागवत क्लास अटेंड करत, आणि प्रत्येकजण कुठल्या तरी नोकरी व्यवसायासाठी बाहेर जायचं आणि संध्याकाळी परत येत असत. आणि केंद्रात राहणारे लोक आहेत ते आपल्या उत्पन्नातला काही भाग किंवा सगळा भाग केंद्राच्या खर्चासाठी देत, आणि त्यावेळी इस्कॉन त्या पद्धतीने चालत असे. एके दिवशी श्री प्रभुपादांना तमाल कृष्ण गोस्वामी आणि बाकी लोकांनी सांगितलं की आता असं आर्थिक रिपोर्ट त्यांनी लिहिलं की एवढं आपल्या देणगी येते आणि एवढा खर्च येतो आणि आपल्याला एवढ्या गोष्टी करायच्या आहेत आणि ते शक्य होत नाही. तर त्या श्री प्रभुपादांनी फक्त एवढंच सांगितलं की तुम्ही सर्वांनी मिळून बाहेर जायचं रस्त्यावरती आणि हरिनाम करायचं. तेव्हा तर ह्या वेळेला जे केंद्रामध्ये लोक राहत होते त्यांना हे समजत नव्हतं की अगोदर श्री प्रभुपादांनी काय सांगितलं होतं की तुम्ही बाहेर नोकरी करा आणि त्यातला जो उत्पन्नाचा भाग आहे तो मंदिराच्या खर्चासाठी द्या. आणि आता हे इन्स्ट्रक्शन आहे, म्हणजे आता जो आदेश आहे हा बदलला आहे. त्याच्यामध्ये काय सांगितलं आहे तर फक्त तुम्ही बाहेर जायचं रस्त्यावरती आणि दिवसभर कीर्तन करायचं आणि परत यायचं. तर त्यांना काही ह्या गोष्टी समजल्या नाहीत, परंतु त्यांनी एवढाच विचार केला की प्रभुपादांच्या बोलण्यावरती आपण विश्वास ठेवू. आणि मग त्यांनी नियोजन करायला सुरुवात केली. बघ, विष्णुजान स्वामी जे होते ते अतिशय सुंदर कीर्तन करत होतं, तर त्यांना कीर्तनाचं नेतृत्व दिलं. तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हे नियोजन करण्यामध्ये निपुण होते, तर त्यांनी संकीर्तन पार्टी बनवली आणि तिचं नियोजन करायला सुरुवात केली. आणि ते रस्त्यावरती जात, शहरातल्या वेगवेगळ्या भागात जात, विशेषतः जे गर्दीचे भाग असत त्या भागात जाऊन तासन तास हरिनाम करून परत येत असत. आणि आपण पाहतो की याच तत्वावरती इस्कॉन जी आहे ती जागतिक मुवमेंट होऊ शकले. कंशिला प्रभुपादांनी उत्तरामध्ये सांगितलं होतं की प्रभुपादांनी जे पत्र लिहिलं होतं त्या पत्रामध्ये जे काही आर्थिक बाबी लिहिल्या होत्या आणि स्टॅटिस्टिक्स होते आणि मंदिरची जी काही फॅक्च्युअल स्थिती होती, जी स्थिती होती त्याचं वर्णन त्याच्यात होतं. तर प्रभुपादांनी त्याच्याविषयी काहीच उत्तर न देता त्यांनी एवढंच सांगितलं होतं की कसं तुमची कृष्ण भावना वाढेल. आणि त्यात त्यांनी सांगितलं की जसं कृष्ण भावना वाढली तर कृष्ण जे ते तुम्हाला जे पाहिजे ते देतील. तेव्हा त्यांनी म्हटलं की जर कृष्णाचा विश्वास तुम्ही संपादन केलात तर सगळी अमेरिका आहे पाहिजे तर कृष्ण तुम्हाला देऊ शकतील. त्यांनी उदाहरण दिलं की जसं वैद्य आहे तर वैद्य पाहतो की आपला जो पेशंट आहे त्याची स्थिती आता चांगली सुधारली आहे तर त्याला नेहमीचं खाणं द्यायला घेण्यासाठी परवानगी देते, परंतु जोपर्यंत त्याची स्थिती खराब आहे तोपर्यंत त्याला पथ्यकारक जे खाणं आहे तेच खावं लागतं. तर तुमची जी आता स्थिती आहे की जी तुम्ही आता कृष्णाला विसरून मायेच्या मागे लागले आहेत, केवळ ते तुम्ही सोडून द्या आणि कृष्ण भावना जे ॲक्टिव्हिटीज आहेत, भगवंताचं हरिनाम आहे, ते केवळ तुम्ही घ्या आणि त्याच्यामुळे कृष्ण तुम्हाला सर्व सोयी उपलब्ध करून देतील. आणि केवळ ह्या श्रील प्रभुपादांच्या या शिकवणीवरती विश्वास ठेवून त्यांच्या शिष्यांनी वेगवेगळ्या देशामध्ये गेले. एक शिवानंद प्रभू म्हणून जे होते ते जर्मनीमध्ये गेले, त्यांना जर्मन भाषाच येत नव्हते. तर त्यांनी सुरुवात काय केली तर ते रस्त्यावर जाऊन बसायचे, त्यांच्या एका गुरुबंधूंनी त्यांना भिक्षापात्र दिलं होतं, ते एकटेच रस्त्यावर बसायचे, भिक्षापात्र समोर ठेवायचे आणि त्याच्यासमोर लिहायचं तर तुम्ही जर हरे कृष्ण आंदोलन, तुम्ही जर हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केला तर तुमचं जीवन सुखी होईल असे एक बाटी लिहायचे आणि ते आपलं हरिनाम घेत बसत. आणि मग काही लोक येऊन त्यांच्या समोर काहीतरी नाणी फेकत असत आणि थोडी जास्त गर्दी जमली का हे प्रचाराला सुरुवात करायचे. आता ह्यांना जर्मनी येत नव्हतं, मग त्यावेळेला ते विचारायचे जमलेल्या लोकांपैकी 10-15 लोकांपैकी कोणाला इंग्लिश येते का, मग त्यातल्याच एखाद्याला भाषांतर करण्यासाठी लावत आणि मग त्याचाच वापर करून ते कृष्ण भावनाचा प्रचार करत. आणि मग हळूहळू काय झालं तर मग त्यांना केंद्रासाठी एक जागा मिळाली. अनेक चांगले सुशिक्षित लोक जे आहेत ते केंद्रामध्ये येऊन कृष्ण भावना ऐकायला सुरुवात झाली. तशा प्रकारे जे गीतेमध्ये सांगितले भगवंतांनी, जर तुम्ही माझ्यावरती विश्वास ठेवलात तर मी तुमची सगळं देखभाल करीन, हे प्रत्यक्षात श्रील प्रभुपादांच्या शिष्यांनी होताना पाहिलं. परंतु त्यांची सगळ्यात महत्त्वाची योग्यता काय असेल तर गुरुच्या शब्दांवरती पूर्ण विश्वास ठेवून त्याप्रमाणे त्यांनी केलं. आणि आपण पाहतो की जे काही कृष्ण भावनेला यश प्राप्त झाले केवळ या एका गुरुच्या वरती श्रद्धेने प्राप्त झालं. जसं श्रील प्रभुपाद त्यावेळेच्या भारताचे पंतप्रधान जे होते इंदिरा गांधी, त्यांना 1971 साली भेटण्यासाठी गेले होते. 1971 साल जायचे भारत पाकिस्तानच्या युद्धामुळे एक अतिशय अशांत असं ते दिवस होते आणि त्यामुळे पंतप्रधानचं मनसुद्धा विचलित होतं. भेटण्यासाठी फार कमी लोकांना संधी प्राप्त होत होते. श्रील प्रभुपादांना भेटण्याची संधी मिळाली तर श्रील प्रभुपादांना इंदिरा गांधीने हाच प्रश्न विचारला की मी असं ऐकते की तुमचे जे शिष्य आहेत जे अमेरिकन गुप्तहेर संघटना आहे CIA आहेत त्याचे एजंट्स का म्हणून नाहीत. तर त्याच्या उत्तरार्थ श्रील प्रभुपादांनी एकच उत्तर सांगितलं की ह्यांनी केलेला त्याग पहा, माझ्या शिष्याने केलेला त्याग पहा. ते रोज सकाळी 4:30 वाजता उठतात, भगवंताचं हरिनाम घेतात, 4 नियमांचं पालन करतात आणि त्यांनी सर्व काही त्याग केलेला आहे. त्यांच्या सर्व वाईट सवयी आहेत त्यांनी सोडून दिले. दुसरा कुठला असा अमेरिकन व्यक्ती आहे तो जो भारतात आला तर तो पंचतारीख हॉटेलमध्ये राहील आणि त्याच्या अनेक सवयी असतील. तर कसं काय शक्य आहे की हे लोक आहेत ते अमेरिकन गुप्तहेर संघटनेचे सदस्य असू शकतील. केवळ ह्या उत्तराने इंदिरा गांधी आहेत पंतप्रधान होत्या त्यांचं समाधान झालं आणि त्यांनी तत्काळ श्रील प्रभुपादांच्या शिष्यांना जो लॉंग टर्म व्हिसा पाहिजे होता तो त्यांनी ताबडतोब सँक्शन केलं. तर आपण पाहतो की श्रील प्रभुपादांची मुख्य जी काही योग्यता असेल तर ते स्वतः श्रील प्रभुपाद नेहमी सांगत होते की माझी जी काही योग्यता असेल तर ती म्हणजे मी माझ्या गुरुवरती निश्चिम श्रद्धा ठेवली होती, त्यांच्या शिकवणीवरती माझा विश्वास होता, ही एकमेव माझी योग्यता आहे. आणि आपण पाहतो त्यामुळे काय होतं की श्रील प्रभुपादांनी ज्या ज्या काही इच्छा केल्या श्रीकृष्णांची सेवा करण्यासाठी त्या सर्व इच्छा पूर्ण झालेल्या आपल्याला दिसतात. जसं कुंभमेळा जो होतं तर आपल्या भारतीयांना माहिती आहे की कुंभमेळा म्हटलं की तिथे प्रचंड गर्दी असते. श्रील प्रभुपादांनी अगदी शेवटच्या क्षणी असं ठरवलं की ह्यावेळच्या कुंभमेळ्याला आपण सर्वजण जाऊ. आता अगदी जर तुम्ही 2 दिवस अगोदर ठरवलं तर त्यावेळेला भारतीय रेल्वेची स्थिती काय असते तर सर्वजण तुम्ही पाहाल का ज्या वेळेला अलाहाबादला ट्रेन्स येतात तर अगदी खचाखच भरलेल्या असतात. लोकं जे दरवाजात लटकत असतात, काही लोकं टपावर बसलेले असतात किंवा इंजिनच्या आजूबाजूला पण लोकं उभी असतात. तर एवढं खचाखच ट्रेन भरले असताना दुसऱ्या दिवशी जाण्याचं श्री प्रभुपादांनी ठरवलं. तर त्याच्या अगोदर केवळ 1 महिना अगोदर एक मिस्टर गुप्ता म्हणून मंदिरामध्ये येत होते जे इंडियन रेल्वेचे चीफ मिनिस्टर होते. त्यांनी श्रील प्रभुपादांना सांगितले उद्याच मी तुमच्यासाठी 1st क्लासचा एक डबा गाडीत स्पेशल जोडतो, तुमच्या डिवोटींसाठी 2nd क्लासचा अजून एक डबा जोडतो. एवढंच नाही तर त्यांनी तो डबा चांगला व्यवस्थित रंगवून घेतला, त्या डब्यावरती चांगली अशी तोरण बिरणं बांधली आणि तो श्रील प्रभुपादांना जाण्यासाठी आणि त्याचबरोबर येण्यासाठी सुद्धा त्याचे नियोजन केलं. त्यांना श्रील प्रभुपाद कुंभमेळ्यात गेलं असताना प्रभुपाद म्हणाले की मला दूध पाहिजे आणि त्यावेळेला तिकडे कुठेच त्यांना दूध आसपास मिळत नव्हतं. त्या गुप्ताने काय केलं की एक गाय जी आहे दुपती गाय आहे तीच आणून इस्कॉनच्या कॅम्पमध्ये ठेवून दिली. त्याचा अर्थ असा आहे की जेव्हा प्रभुपादांनी भगवान श्रीकृष्णांच्या ज्या काही इच्छा आहेत, श्रीकृष्णांना काय सगळ्यात आवडतं, की ज्यांचे बद्ध जीव आहेत त्यांच्यापासून दूर गेलेत, कुठल्याही पित्याला हेच आवडेल की आपले जे पुत्र आहेत ते सुखासमाधाने आपल्या घरात राहावे. आणि ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी शिल प्रभुपादांनी जे जे केलं आणि त्यामुळे भगवंतांनी पण त्यांच्या सर्व इच्छा पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न केला. आणि म्हणूनच आपण पाहतो की शिल प्रभुपादांच्या आदेशानुसार जे तीन गृहस्थ जोडपी जे ती इंग्लंडमध्ये गेले आणि जे शिल प्रभुपादांचे गुरुभाऊ होते, जे संन्यासी होते, विरक्त होते, ते जे करू शकले नाहीत ते हे हे तिघ गृहस्थ जे कपल होते ते करू शकले. तर त्यावेळी शिल प्रभुपादांनी सांगितलं की तुम्हाला काही शास्त्र पंडित असण्याची आवश्यकता नाही, की तुम्हाला काही भगवे कपडे घालणे किंवा विरक्त असण्याची आवश्यकता नाही. केवळ जर तुमचा गुरूंच्या शब्दावरती विश्वास असेल तर तुम्ही कृष्ण भावना जगात प्रचार करू शकते. आणि त्यामध्ये त्यांनी फक्त एकच गोष्ट सांगितली, जसं आता प्रत्येक आदेश असेल तर त्याला काहीतरी कंडिशन्स असतात. तर त्यात त्यांनी सांगितलं की कुठल्याही प्रचारकाला जर यशस्वी प्रचारक व्हायचं असेल तर त्यांनी स्वतःचं स्वहित विसरलं पाहिजे. स्वतःचं स्वहित विसरल्याने जर तुम्ही केवळ इतरांना भक्ती देण्याचा प्रयत्न केलात तर त्याच्यामध्ये तुम्ही नक्कीच यशस्वी व्हाल. तर आज आपण पाहू की शिल प्रभुपादांनी आपल्या शिष्यांना त्यांच्या हृदयात असलेली गुरुभक्ती प्रदान केली आणि केवळ कृष्ण महामंत्राचा जप करून जगभर आपण कृष्ण भावना प्रसारित झाल्याचं पाहिलं. आणि त्याचबरोबर शिल प्रभुपादांच्या अंतःकरणात काय भाव असायचे, तर शिल प्रभुपादांनी जयानंद प्रभूंना एक पत्र लिहिलं होतं, जे पत्र तमाल कृष्ण महाराजांनी वाचलं, तर त्या पत्रामध्ये शिल प्रभुपादांनी हेच लिहिलं होतं की तुम्ही माझे जे काही शिष्य आहात मला तुमचा फार गर्व आहे की तुमच्यामुळे मी कृष्ण भावना जगामध्ये प्रचारित करू शकतो, तुमच्या संगतीनीमुळे मी माझ्या गुरुची आज्ञा पार पाडू शकत आहे. ते हे पाहून तमाल कृष्ण महाराजांना आश्चर्य वाटलं की वास्तविक शिल प्रभुपादांच्यामुळे आम्ही भाग्यवान झालो आहेत, आम्हाला गुरुची सेवा करण्याला संधी प्राप्त झाली आणि त्याच्यामुळे आमच्या सगळे कुसंगती निघून गेल्या आहेत. परंतु जे शिल प्रभुपादांच्या मनात काय भाव आहेत, तर माझ्या शिष्यांमुळे मी माझ्या गुरुची सेवा करू शकतो. तर आपण नेहमी हे लक्षात ठेवायचं की कशी काय 1965 पासून कुठल्या तत्वांवरती आपले इस्कॉन मुवमेंट आहे ते जगभर पसरू शकली, ते म्हणजे केवळ हरिनामांवरती निशंश अढळ श्रद्धा आणि त्याचबरोबर गुरूंच्या वचनाप्रती अढळ श्रद्धा, या दोन गोष्टीचा आपण लक्षात ठेवला तर नक्कीच आपण शिल प्रभुपादांना आनंदित करू शकू, त्यांनी दिलेली शिकवणे ते आपण आपल्या जीवनामध्ये उतरवू शकू आणि हा जो वारसा आहे तो पुढल्या पिढीस आपण देऊ शकू. हरे कृष्ण.
धन्यवाद सनत कुमार प्रभू. तो अभी हम मंत्र पुष्पांजलि के लिए खड़े रहेंगे. तो सबसे निवेदन है कि 3 बार पुष्पांजलि अर्पण होगी, तो कृपया पुष्प फेंके नहीं, अपने हाथ में ही रखें. अंत में सब प्रभुपाद जी के सामने जो टेबल है उस पे आकर आप अर्पण कर सकते हैं. हरे कृष्ण. रूप रघुनाथ पुष्पांजलि.
हरे कृष्ण। अभी हम श्रील प्रभुपाद को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे, तो जब पहले मंगलाचरण होगा, फिर बाद में हम श्रील प्रभुपाद प्रणति बोलेंगे, और फिर जब तीन बार प्रभुपाद प्रणति बोलेंगे, तीन बार हमारे पास जो पुष्प होंगे तीन भागों में उसको बांटना है। तीन बार जब प्रणति बोलेंगे, हर प्रणति के बाद हमें पुष्प अर्पण करना है और हर बार प्रणाम भी करना है,
और तीनों पुष्पांजलि साथ में बाद में हम टेबल पर अर्पण करेंगे। हरे कृष्ण।
ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितमेन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश नम ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने श्रीवर्ष भानवी देवी दायिताय कृपाब्दये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाड्य श्रीरूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्ते दिनतारिणे रूपानुग विरोध अपसिद्धांत द्वंतहारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंबर सांबोधे पादांबोजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते
गौरविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्ट सज्जन प्रियः वैष्णव सार्वभौम श्री श्रीजगन्नाथाय ते नमः वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषये नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते जयतां सुरतो पंगोर मम मंद मतेर्गति मत सर्वस्व पदाम्बोज राधा मदन मोहन दिव्यादुंदावरण्य कल्प्रद्रुमद श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थ श्रीमद्राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्टालिभि सेव्यमानो स्मरामि श्रीमान रासरसारम्भे वंशीवट तटस्थितः कर्षण वेन सुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीयस्तु नः तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे एष पुष्पांजलि नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे एष पुष्पांजलि
प्रणाम। फूलों को नीचे फेंकना नहीं,
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे ईश पुष्पांजलि श्रील प्रभुपाद की।
जय श्रील प्रभुपाद की। संसारद वानललीडलोका त्रणाय कारुण्य घना घनात्वा प्राप्तस्य कल्याण गुणानवास्य वंदे गुरो श्री चरणारविंद महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता वादित्रमाद्यान मनसोरसेना रोमांचकं पाशुतरंगभाजो वंदे गुरोः श्री चरणारविंदा श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मजनादो युक्तस्य भक्ता शनियुञ्जतोऽपि वंदे गुरोः श्री चरणारविंद चतुर्विधा श्री भगवत प्रसादो स्वादुन तृप्तान हरि भक्त संगा कृत्वैव तृप्ते भजत सदैव वंदे गुरोः श्री चरणारविंद श्री राधिका माधवयोरपारा माधुर्यलीला गुणरूपनाम्ना प्रतीक्षणास्वादनलोलुपस्य
वंदे गुरु श्री चरणारविंद 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 निकुंजयो नौरति केलिसिदै यायालि भीर्युक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद जय प्रभुपाद साक्षाधरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सदि किन्तु प्रभोर्या प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायन्तु वां सस्य यशस्त्रिसंज्ञं वंदे गुरु श्री चरणारविंद 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 जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा भक्ति वेदांत स्वामी जय प्रभु पदा भक्ति वेदांत स्वामी जय प्रभु पदा प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे
बोलो बोलो
हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Hare